भूमिका मसीह से मिलने की तैयारी। एलॉन जी वाइट। समस्त एडवेंटिस्ट लोग उत्सुकता से उस दिन की बाट जो रहे हैं जब यीशु उन्हें उस सुंदर घर को ले जाने आए जिसे वो तैयार करने गया है। उस स्वर्गीय धाम में न तो पाप होगा, न निराशाएं, न भूख लगेगी, न दरिद्रता, न रोग और न मृत्यु होगी। जब प्रेरित यूहन्ना ने उन विशेषाधिकारों पर विचार किया जिन्हें इनामदारों को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो वो ये कहे बिना न रह सका, देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। पहला यूहन्ना 3:1-2। परमेश्वर का अभिप्राय है कि प्रत्येक का चरित्र यीशु की तरह हो। प्रारंभ में परमेश्वर की युक्ति थी कि मानव परिवार का हर सदस्य जो उसके स्वरूप में पैदा किया गया है ईश्वरीय गुणों का विकास करे। इस अभिप्राय का प्रतिपालन करने के लिए हमारे प्रथम एदनवासी माता पिता मसीह तथा स्वर्गदूतों से साक्षात मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। परंतु मनुष्य के पापी हो जाने के बाद वो स्वर्गीय प्राणियों से खुल्लम खुल्ला बातचीत नहीं कर सकता था।
मनुष्य का नेतृत्व न टूट जाए, इसलिए परमेश्वर ने अन्य साधनों द्वारा अपनी इच्छा लोगों पर प्रकट की, जिसमें प्रमुख भविष्यवक्ताएं हैं, अर्थात उन पुरुषों व स्त्रियों द्वारा जो जनता तक परमेश्वर का संदेश पहुंचाते हैं। इसराइलियों को परमेश्वर ने बतलाया, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा व स्वप्न में उससे बात करूंगा। गिनती 12:6। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोगों को संदेश और प्रकाश मिलता रहे, जिनसे वे उस समय को जाने और पहचाने जिसमें वे रहते हैं और भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। आमोस 3:7। इसी से परमेश्वर के लोगों अर्थात ज्योति की संतान, थिस्सलुनीकियों 5:5, और संसार के लोगों में अंतर पाया जाता है। नबी के काम में भावी कथन से भी अत्यधिक बातें निहित हैं। मूसा नबी ने बाइबल की 6 पुस्तकें लिखी हैं। उसने भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में बहुत कम लिखा है। उसके काम के विषय में होशे नबी विस्तार पूर्वक कहता है, एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इसराइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यद्वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। होशे 12:13। नबी को ना तो उसकी जाति के लोग नियुक्त करते हैं और ना ही वो स्वयं नियुक्त होता है। किसी व्यक्ति के नबी होने का चुनाव संपूर्णतः परमेश्वर ही के हाथ में है। वही केवल मनुष्य के हृदय को देख और जान सकता है। ये बात प्रत्यक्ष है कि परमेश्वर के लोगों को इतिहास में पुरुष और स्त्री दोनों उसके मुख पात्र होने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर के चुने हुए इन स्त्री पुरुषों ने उसके मुखपात्र के रूप में उन बातों को वर्णन तथा उल्लेख किया है जिनको परमेश्वर ने उन्हें दर्शन में बताया है। परमेश्वर के बहुमूल्य वचन ही में उनके संदेशों का मूल है। इन नबियों के द्वारा मानव परिवार के सदस्यों को उस संघर्ष का पता चलता है जो मनुष्यों की आत्माओं के प्रति हो रहा है, अर्थात शैतान और उसके दूतों के विरुद्ध मसीह और उसके दूतों का संघर्ष। हमें बतलाया जाता है कि ये संघर्ष जगत के अंतिम दिनों में होगा और परमेश्वर उन साधनों को प्रदान करेगा जिनसे उसके काम की रक्षा होगी और उन पुरुषों और स्त्रियों के समुदाय के चरित्र को जो अपने प्रभु की मुलाकात के लिए बाट जोह रहे हैं सिद्ध करेगा। प्रेरितों ने जो बाइबल के लेखकों में आखिरी थे अंतिम दिनों की हालत का स्पष्ट चित्र खींचा है। पौलुस ने कठिन समयों का वर्णन किया है और पत्रस ने हंसी ठट्ठा करने वालों के विषय में चेतावनी दी है कि वे अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ है। इस समय कलीसिया संघर्ष में संलग्न है क्योंकि यूहन्ना ने देखा कि शैतान स्त्री के शेष संतान से लड़ने को गया है। इन बाइबल के लेखकों ने मालूम किया कि यीशु के आगमन के पहले अपने लोगों को विशेष प्रकाश तथा मदद देने का परमेश्वर का प्रबंध था। पौलुस ने वर्णन किया है कि जो कलीसिया मसीह के आगमन की उत्सुकता से बाट देख रही है अर्थात एडवेंटिस्ट कलीसिया की किसी वरदान में घटी नहीं होगी। पहला कुरंथियों 1:7-8, वो संयुक्त व परिपक्व होगी और उसके योग्य नेता होंगे। उसमें नबूवत की आत्मा का वरदान पाया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेरित, नबी, उपदेशक, चरवाहे तथा शिक्षक पाए जाएंगे। इफिसियों 4:11। प्रेरित यूहन्ना अंतिम दिनों की कलीसिया के सदस्यों की पहचान शेष कलीसिया करके बताता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:17। इस प्रकार वो आज्ञा पालन करने वाली मंडली है। इस शेष मंडली में यीशु की गवाही भी पाई जाएगी, जो भविष्यद्वाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य 18:10। तब यह स्पष्ट है कि परमेश्वर की योजना में सेवंथ डे एडवेंटिस्ट मंडली, नबूवत की कलीसिया, जब वो अस्तित्व में आई तो उसके अंदर नबूवत के आत्मा का वरदान पाया गया। ये बात कैसी उचित है कि परमेश्वर अपने लोगों से जगत के अंतिम दिनों में, जब संघर्ष संगीन और समय कठिन है, इस प्रकार वार्तालाप किया था। नबूवत की ये कलीसिया, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया, 100 वर्ष से अधिक हुए जब अस्तित्व में आई, तो ठीक उसी समय जो नबूवत द्वारा बतलाया गया था। एक आवाज के मध्य ये कहते सुनाई दी, परमेश्वर ने मुझे पवित्र दर्शन में दिखलाया। ये वचन अहंकार पूर्ण नहीं थे, परंतु एक 17 वर्षीय कुमारी की उक्ति थी, जो परमेश्वर का मुखपात्र होने को बुलाई गई थी। 70 वर्षों के विश्वसनीय सेवा कार्य के दरमियान वह आवाज हमारे बीच मार्गदर्शन, सुधार तथा शिक्षा का कार्य करती रही। वही आवाज आज भी परमेश्वर के चुने हुए पैगंबर मिसेज ई जी वाइट की अथक लेखनी से लिखित सहस्रों पृष्ठों द्वारा सुनाई दे रही है। मसीह और शैतान के बीच के महान संघर्ष का दर्शन। सन 1848 के मध्य मार्च एक इतवार की संध्या की बात है कि अमेरिका के एक पूर्वी भाग का एक देहाती स्कूल ठसाठस भरा हुआ था, क्योंकि लोग एक सभा के लिए एकत्र हुए थे। एल्डर वाइट एक युवक की मृत्यु पर अंत्येष्टि क्रिया संबंधी उपदेश दे रहे थे। जब वे उपदेश समाप्त कर चुके तो मिसेज ई जी वाइट के मन में यह विचार प्रबल हुआ कि उन्हें शोकातुरों की सांत्वना के हेतु कुछ शब्द कहना यथा योग्य होंगे। अतएव वे खड़ी होकर 2-1 मिनट तक बोलकर रुक गईं। लोग उनके मुख की ओर ताकने लगे कि उनके शब्दों को पकड़े, परंतु वे चौंक पड़े जब उन्होंने उन्हें परमेश्वर की जय के शब्द जोर से कहते सुना। मिसेज वाइट दर्शन देख रही थी। एल्डर वाइट ने लोगों की मिसेज वाइट को दिए गए दर्शनों के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि उनकी धर्म पत्नी को 17 वर्ष की अवस्था ही से दर्शन दिए गए थे। उन्होंने लोगों को बतलाया कि यद्यपि उनकी मिसेज वाइट आंखें खुली थीं और ऐसा लगता था कि वह कुछ दूरी पर किसी वस्तु को ध्यान से देख रही थीं, पर वह अपने वातावरण से निपट अनभिज्ञ थीं और जानती न थीं कि उनके इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है। एल्डर वाइट ने गिनती 24:4-16 पद की ओर संकेत किया। ईश्वर के वचनों के सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान को जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। उन्होंने यह भी बतलाया कि जब वह मिसेज वाइट दर्शन देखने लगती है तो सांस नहीं लेती, और दानियल 10:17 के दर्शन का अनुभव पढ़कर सुनाया। उसने कहा, इससे मेरा बल जाता रहा और मेरी श्री हत हो गई। तब एल्डर वाइट ने लोगों को दावत दी कि जिसका जी चाहे मिसेज वाइट की दर्शन में होते समय परीक्षा करे। इस प्रकार की परीक्षा के लिए उन्होंने सबकी अनुमति दी और इच्छा प्रकट की कि कोई डॉक्टर आकर उनकी परीक्षा करे। जब लोग निकट आए तो उन्होंने मालूम किया कि मिसेज वाइट सांस तो नहीं ले रही हैं, परंतु हृदय नियमानुसार धड़क रहा है और उनके गालों की कांति में कोई परिवर्तन नहीं है। एक दर्पण उनके मुख पर लगाया गया, पर उस पर भाप का कोई चिन्ह नहीं आया। फिर वे एक मोमबत्ती लाए और उनकी नाक और मुंह के पास रखा, परंतु ज्वाला सीधी रही, जरा भी टेढ़ी ना हुई। तब लोग जान गए कि वे सांस नहीं ले रही थीं। जब वह कमरे में घूमती थीं, अपने हाथों को शिष्टता के साथ घुमाती थीं और दर्शन की बातों को रुक कर बतलाती जाती थीं, दानियल की तरह पहले तो उनका प्राकृतिक बल जाता रहा, परंतु बाद में उनको अलौकिक शक्ति दी गई। देखिए दानियल 10 आयत 7 8 18 19। मिसेस वाइट 2 घंटे तक दर्शन देखती रहीं। 2 घंटे तक उन्होंने एक बार भी सांस न ली। फिर दर्शन की समाप्ति पर उन्होंने गहरी सांस ली और 1 मिनट रुककर फिर दूसरी सांस ली। शीघ्र ही स्वाभाविक सांस शुरू हो गई और वह अपने वातावरण को पहचानने लगी और सचेत होकर सब कुछ जानने लगी। मिसेस वाइट को अक्सर दर्शन के समय मिसेस मार्था अमेडन देखा करती थीं, जो निम्न में वर्णन करती है। दर्शन में उनकी आंखें खुली रहती थीं। वह सांस तो नहीं लेती थीं, परंतु कंधों और भुजाओं की शोभायमान गति दर्शनानुसार होती थीं। संभव नहीं था कि कोई उनके हाथों तथा भुजाओं को हिला सके। अक्सर वह एक शब्द करके बोलती थीं, पर कभी कभी वाक्य भी कहती थीं, जिससे पता लगता था कि वह स्वर्ग में या पृथ्वी पर किस प्रकार का दृश्य देख रही है। दर्शन में उनका प्रथम शब्द होता था महिमा, जो पहले तो निकट सुनाई देता था, फिर उसकी ध्वनि दूर होती जाती थी। कभी कभी ये बात दोहराई जाती थी। जो लोग मौजूद थे उनमें कोई हलचल न मचती थी, न डरते थे। ये तो एक गंभीर खामोशी का दृश्य था। जब दर्शन समाप्त हो चुकता था और स्वर्गीय ज्योति नजर से ओझल हो जाती थी, तब मानो वह फिर पृथ्वी पर आ जाती थी। तब वह गहरी सांस लेकर कह उठती, अंधकार। तत्पश्चात वह निर्बल और लंगड़ी सी हो जाती थी। हमें उस पाठशाला के कमरे के 2 घंटे के दर्शन की कहानी की ओर लौटना है। इस दर्शन के विषय में मिसेस वाइट ने बाद में स्वयं लिखा, मसीह और शैतान के बीच युगों के महान संघर्ष के विषय में 10 वर्ष हुए। जो दर्शन मैंने देखा था उसका अधिकांश भाग फिर से दिखाया गया और मुझे उसे लिखने का आदेश दिया गया। दर्शन में उनको ऐसा लगा कि वो उन सारे दृश्यों को देख रही है जो उनके सामने से गुजर रहे थे। पहले उन्हें प्रतीत हुआ कि वो स्वर्ग में है और उन्होंने लूसीफर का पाप तथा पतन देखा। तब उन्होंने इस जगत की उत्पत्ति तथा हमारे पहले माता पिता को अदन की वाटिका में देखा। उन्होंने आदम और हव्वा को सर्प के प्रलोभनों में फंसने और बाग से निकलते देखा। शीघ्र ही बाइबल का इतिहास उनके सामने आया। उन्होंने इज़राइल के प्राचीनों तथा नबियों का अनुभव देखा। फिर उन्होंने यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता का जीवन व मृत्यु देखा, जहां वो हमारे महायाजक के रूप में उस समय से अब तक कार्य अपने प्राणों को जोखिम में डाल रहे थे। तब वो न्याय के दृश्यों तक लाई गईं, जिसका आरंभ स्वर्ग में सन 1844 में हुआ। फिर हमारे युग तक लाकर भविष्य का दर्शन दिया गया, जहां उन्होंने मसीह का आगमन स्वर्ग के मेघों के साथ देखा। उन्होंने 1,000 वर्ष और नई पृथ्वी के दृश्य देखे। इस स्पष्ट प्रदर्शनों को अपने सामने रखकर मिसेस वाइट अपने घर को लौटी और जो कुछ उन्होंने देखा था तथा सुना था उसे लिखने को तैयार हुई। 6 महीनों के बाद पृष्ठों की एक छोटी सी पुस्तक छापे खाने से निकली, जिसका नाम मसीही और उसके दूतों का शैतान और उसके दूतों से संघर्ष था। इस छोटी सी पुस्तक को उत्साहपूर्वक ग्रहण किया गया, क्योंकि उसमें कलीसिया के अनुभव का बड़ी स्पष्टता से चित्रण किया गया था और शैतान की युक्तियों तथा उन तरीकों की पोल जिससे वो कलीसिया को और जगत को उस आखिरी संघर्ष में धोखा देगा खोलकर बताई गई है। एडवेंटिस्ट लोगों ने परमेश्वर की इस बात के लिए कितना उपकार माना कि उसने इस अंतिम दिनों में नबूवत के आत्मा के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बात करता है। जिस बड़े वाद विवाद का वर्णन इस छोटी सी आध्यात्मिक वरदान स्पिरिचुअल गिफ्ट्स नामक पुस्तक में किया गया है, बात को अर्ली राइटिंग्स नामक पुस्तक के उत्तरार्ध भाग में छपवाया गया है, जो आज भी उसमें मौजूद है। परंतु ज्यों ज्यों कलीसिया बढ़ती गई और समय गुजरता गया, अगले दर्शनों में महान वाद विवाद की कहानी को विस्तृत रूप में प्रकट करता गया और मिसेस वाइट ने उसे सन 1870 और 1884 ईस्वी के बीच 4 प्रतियों में दोबारा लिखा, जिसको नबूवत की आत्मा स्पिरिट ऑफ प्रोफेसिप कहते हैं। महान वाद विवाद की कहानी के महत्वपूर्ण भाग जो इन पुस्तकों से लिए गए हैं स्टोरी ऑफ द रिडेम्पशन नामक पुस्तक में वर्णन किए गए हैं। ये ग्रंथ जो कई भाषाओं में छप चुका है। महान वाद विवाद के इन दर्शनों में जो कुछ दिखलाया गया है उसको कई जातियों के पास पहुंचाता है। मिसेस व्हाइट ने वाद विवाद में कन्फ्लिक्ट ऑफ एजेस के सिलसिले को 5 प्रतियों में अर्थात पेट्सी एंड किंग्स, द डिजायर ऑफ एजेस, एक्ट्स ऑफ द अपासल्स और ग्रेट कंट्रोवर्सी में उस संपूर्ण वाद विवाद का सविस्तार वर्णन किया है। ये पुस्तकें जो उत्पत्ति से लेकर मसीही संबत एवं युगों के अंत तक बाइबल के इतिहास के अनुकूल लिखी गई हैं, अधिक ज्योति तथा प्रोत्साहन दिलाती हैं। यही पुस्तकें सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों की ज्योति के संतान और दिन के संतान कहलाने में सहायता देती हैं। इसी अनुभव में इस आश्वासन की पूर्ति देखते हैं। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ न करेगा। आमोस 3:7। प्रकाश किस प्रकार आया, उसके विषय में इन पुस्तकों में वर्णन करने के महान वाद विवाद की कहानी में पेश करते हुए मिसेस व्हाइट कहती है, पवित्र आत्मा के प्रकाशन द्वारा सत्य और असत्य के बीच छिड़े चिरकालीन संघर्ष के इन पृष्ठों के लेखक पर प्रकट किए गए हैं। समय समय पर मुझे जीवन के राजकुमार, हमारे मुक्तिदाता येशु और असत्य के सरदार व पाप के उत्पादक परमेश्वर की व्यवस्था के प्रथम अपराधी शैतान के बीच युगों से चला आ रहा महान वाद विवाद की कार्यवाही को देखने का अवसर मिला। जब परमेश्वर के आत्मा ने मेरे मन में अपने वचन के महान सत्यों तथा भूत व भविष्य दोनों के दृश्यों को प्रकट किया तो मुझे आज्ञा हुई कि जो कुछ प्रदर्शित किया गया है उसको दूसरे पर प्रकट करूं, युगों के इतिहास को दोहराऊं, विशेषकर उसे ऐसा उपस्थित करें कि उससे भविष्य में शीघ्र होने वाले संघर्ष पर प्रकाश पड़े। नबी को ज्योति कैसे मिली? इसराइलियों के अनुभव में जैसा हम देख चुके हैं, एक बार परमेश्वर ने लोगों को बतलाया कि वो उनसे किस प्रकार नबियों द्वारा बातचीत करेगा। उसने कहा था, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने को प्रकट करूंगा व स्वप्न में उससे बात करूंगा। गिनती 12:6। पिछले पाठ में आपने महान वाद विवाद से संबंधित दर्शनों की कहानी पढ़ी, जिनके संग कुछ विशेष भौतिक अचंभित घटनाएं उपस्थित हुईं। शायद कोई तर्कानुसार यह प्रश्न करे कि ये दर्शन इस भांति क्यों दिए गए। निस्संदेह लोगों में विश्वास स्थापन करने और आश्वासन दिलाने के लिए कि सचमुच में परमेश्वर नबी से बातें कर रहा है। मिसेस व्हाइट ने दर्शनों के बीच अपनी हालत का सविस्तार वर्णन कई बार नहीं किया, पर एक समय उन्होंने कहा, ये संदेश इस प्रकार इसलिए दिए गए कि लोगों का विश्वास मजबूत हो, ताकि इन अंतिम दिनों में हम नबूवत के आत्मा पर भरोसा करें। ज्यों-ज्यों मिसेस व्हाइट का काम उन्नति करता गया, त्यों-त्यों उस काम की जांच बाइबल में बताई गई परीक्षाओं द्वारा होती गई। उदाहरणार्थ, तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे, परंतु फल को बढ़ने में समय लगता है, और परमेश्वर ने दर्शन देने के संबंध में आरंभ में ही ऐसे प्रमाण दिए जिससे लोगों को विश्वास करने में मदद मिली। परंतु सारे दर्शन जिनके संग प्रत्यक्ष भौतिक अचंभित घटनाएं उपस्थित हुईं, जनसाधारण में नहीं दिए गए। जिस पद से ये पाठ आरंभ होता है उसमें हमें बतलाया गया कि परमेश्वर नबी से केवल दर्शन द्वारा ही नहीं किंतु स्वप्न में भी बातें करेगा। यह नबूवती स्वप्न है जिसकी ओर दानियेल संकेत करता है। बाबुल का राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियेल ने पलंग पर स्वप्न देखा, तब उसने वो स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियेल 7:1। दानियेल उस बात का बयान करता है जो उसको दिखलाई गई थी। कई मौकों पर वो कहता है, मैंने रात के दर्शन में देखा। अक्सर मिसेस व्हाइट के अनुभव में ये बात आई कि उनको दर्शन उस समय दिए गए जब रात के घंटों में उनका मन विश्राम कर रहा था। हम इस प्रकार की भूमिका संबंधी कथन पढ़ते हैं, रात के दर्शनों में कुछ बातें मुझे सफाई बतलाई गईं, अथवा परमेश्वर अक्सर नबी से नबूवती स्वप्न द्वारा बातें करता था। नबूवती स्वप्न या रात के दर्शन अथवा साधारण स्वप्न में आपस में क्या संबंध है, इस प्रकार का प्रश्न उठना संभव है। इसके विषय में मिसेस व्हाइट ने सन 1864 में लिखा, जीवन की साधारण बातों से उत्पन्न हुए अनेक स्वप्न होते जिनके संग परमेश्वर के आत्मा का कोई संबंध नहीं है। झूठे दर्शन भी होते हैं जो शैतानी आत्मा से उभारे जाते हैं, परंतु परमेश्वर की ओर से दिए गए स्वप्नों को उसके वचन के अनुसार दर्शनों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे स्वप्न अपनी यथार्थता का प्रमाण अपने में रखते हैं जब इस बात पर विचार किया जाता है कि किस परिस्थिति के अधीन ये दिए गए और किन लोगों को दिए गए। एक समय मिसेज व्हाइट के जीवन में अंतिम दिनों में उनके पुत्र एल्डर W.C. व्हाइट ने अधिक जानकारी रखने वाले लोगों के हेतु उनसे यह प्रश्न पूछा, माताजी, आप अक्सर कहती हैं कि आप पर रात के दर्शन में अमुक अमुक बातें प्रकट की गईं। आप उन स्वप्नों का वर्णन करती हैं जिनमें आपको प्रकाश दिया जाता है। हम सब स्वप्न देखते हैं। आप कैसे जानती हैं कि परमेश्वर ही आपसे स्वप्न में बोल रहा है? उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि जो स्वप्नोज दूत रात के दर्शन में मेरे पास खड़े होकर आदेश देता है, वही दिन के दर्शनों में भी पास रहकर आदेश देता है। वह स्वर्गीय प्राणी जिसका यहां संकेत किया गया है, अन्य अवसरों पर दूत, मेरा मार्गदर्शक, मेरा शिक्षक आदि करके कहा गया है। रात के घंटों में प्राप्त हुए प्रकाशनों के विषय में नबी के मन में न तो कोई चिंता न संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनसे संबंधित परिस्थितियों ने प्रत्यक्ष कर दिया कि आदेश परमेश्वर ही की ओर से है। दूसरे मौकों पर मिसेज व्हाइट को प्रार्थना करते समय अथवा बातें करते व लिखते समय ही दर्शन दिए जाते थे। उनके साथ वालों को पता भी न चलता था कि वे दर्शन में हैं, जब तक वो बोलते बोलते या प्रार्थना करते करते रुक न जाती थीं। एक दफा उन्होंने ये कहा, जब मैं उत्साहपूर्ण प्रार्थना में संलग्न थी तो मुझे अपने आसपास की बातों का कुछ भी पता नहीं रहा। कमरा प्रकाश से भर गया और मैं उस संदेश को सुनने लगी जो लगता था कि जनरल कॉन्फ्रेंस जैसी सभा को दिया गया हो। 70 वर्षों की दीर्घायु के सेवा कार्य के मध्य मिसेज व्हाइट को जितने दर्शन दिए गए उनमें सबसे लंबा दर्शन 4 घंटों तक और सबसे छोटा क्षण मात्र ही रहा, परंतु अक्सर ये दर्शन आधे घंटे या इससे कुछ अधिक देर तक रहा करते थे। लेकिन कोई विशेष नियम नहीं बतलाया जा सकता जिससे सारे दर्शनों पर एक सा नियम लागू हो, क्योंकि ये ठीक ऐसा था जैसा पौलुस लिखता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके। नबी को दर्शनों के द्वारा ज्योति दी जाती थी, परंतु नबी दर्शन के समय लिखने को नहीं बैठता था। उसका कार्य यांत्रिक नहीं था। विशेष अवसरों को छोड़ परमेश्वर उसे बोलने के लिए कोई विशेष शब्द नहीं देता था। न स्वर्गदूत नबी का हाथ पकड़कर लिखवाता था कि ठीक उन्हीं शब्दों का प्रयोग तथा उल्लेख हो जो उसके श्रोतागणों को प्रकाश तथा शिक्षा देने योग्य हों, चाहे वे संदेश को पढ़ें अथवा सुने। कदाचित हम ये प्रश्न करें कि नबी का मन किस प्रकार प्रकाशमान होता होगा, उसको वे सूचनाएं तथा आदेश किस प्रकार मिलने होंगे जिन्हें उसे लोगों तक पहुंचाने होते हैं। जिस प्रकार दर्शन देने का कोई खास नियम निश्चित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नबी को प्रेरित संदेश प्राप्त करने का कोई विशेष नियम स्थापन नहीं किया जा सकता। तो भी हर हालत में अनुभव बिल्कुल स्पष्ट होता था, जिससे नबी के मन पर अमित प्रभाव पड़ता था। जिस प्रकार वो वस्तु जिसे हम देखते तथा अनुभव से मालूम करते हैं, हमारे मन पर उस वस्तु की अपेक्षा जिसे हम केवल सुनते हैं अधिक गहरा प्रभाव डालती है। उसी प्रकार वे प्रदर्शन जब नबी उन होने वाली घटनाओं को देखता है उसके मन पर दृढ़ और गहरा प्रभाव डाल देते हैं। पिछले पाठ में उस महान वाद विवाद से संबंधित दर्शन की कहानी का वर्णन करते हुए हमने मिसेज व्हाइट के शब्दों का प्रयोग किया था कि ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में उनको किस प्रकार सूचनाएं मिली, दूसरे समय पर वर्णन करते हुए कि किस प्रकार प्रकाश उनके पास पहुंचा, वो बोली कि दर्शन में अक्सर मेरा ध्यान उन दृश्यों की ओर आकर्षित किया जाता है जो पृथ्वी पर होते हैं, कभी कभी मुझको सुदूर भविष्य में पहुंचाया जाता है और होने वाली घटनाएं दिखलाई जाती हैं, फिर मुझको वे घटनाएं भी दिखलाई जाती हैं जो भूतकाल में हुई थीं। इन बातों से स्पष्ट होता है कि एलन जी व्हाइट ने इन घटनाओं को मानो प्रत्यक्ष रूप में साक्षात गवाह के रूप में देखा, फिर वे दर्शन में उनके सामने प्रदर्शित हुईं जिससे उनके मन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। अन्य समयों पर उनको ऐसा लगता था कि कि मानो वह सचमुच सामने आए दृश्य में भाग ले रही हैं और महसूस कर रही, देख रही तथा आज्ञा पालन भी कर रही हैं, जबकि वास्तव में वह भाग नहीं ले रही थी, परंतु उनके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा जिसे वह भूल न सकी। उनका सबसे पहला दर्शन, जो 56वें पृष्ठ से 62वें पृष्ठ तक में पाया जाता है, इसी प्रकार का था। अन्य अवसरों पर जब मिसेस वाइट दर्शन में होती थीं, तो ऐसा लगता था कि वह दूर दो जगहों में सभाओं या परिवारों में अथवा संस्थाओं में उपस्थित है। ऐसी सभाओं में उपस्थिति का भाव इतना प्रत्यक्ष होता था कि मिसेस वाइट सविस्तार बतला सकती थीं कि विभिन्न व्यक्तियों ने क्या क्या कहा अथवा क्या क्या किया। एक बार जब मिसेस वाइट दर्शन में थीं, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वे हमारे एक अस्पताल का दौरान कर रही हैं और प्रत्येक कमरे की जांच कर रही है, मानो वे प्रत्येक कार्यवाही को देख रही हैं। इस अनुभव के विषय में उन्होंने लिखा, वह बकवाद, व्यर्थ हंसी ठट्टा, निरर्थक उपहास के शब्द मेरे कान में सुनाई पड़े तो मुझे बड़ा शोक हुआ। जब मैंने ईर्ष्या तृप्ति की भावना, शत्रुतापूर्ण शब्दों तथा बेलगाम बातचीत को सुना, जिनसे स्वर्गदूत भी लज्जित होते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसी संस्था की अधिक मनोहर दशाएं दिखलाई गईं। वह इन कमरों में लाई गईं, जहां से प्रार्थना की आवाज आ रही थी। यह आवाज कैसी सुंदर थी, पथ प्रदर्शक। स्वर्गदूत की आज्ञानुसार जो उनकी इन कमरों में तथा विभिन्न विभागों में अग्रसरी कर रहा था, यात्रा के आधार पर संदेश लिखा गया। मिसेस वाइट को स्पष्ट, अक्सर लाक्षणिक प्रदर्शनों में प्रकाश दिया जाता था। इस प्रकाश का प्रदर्शन निम्नलिखित चार वाक्यों में स्पष्टता से वर्णन किया गया है, जिसकी नकल एक प्रमुख कर्मचारी को दिए गए संदेश से ली गई है, जो एक खतरे में था। एक और मौके पर मुझ पर यह प्रकट किया गया कि आप सेनापति के रूप में घोड़े पर सवार हो एक झंडा लिए जा रहे हैं। कोई आया और आपके हाथ से वह झंडा छीन ले गया जिस पर ये शब्द लिखे थे, परमेश्वर की आज्ञाएं और यीशु का विश्वास, और उसको पांव तले मिट्टी में रौंद डाला। मैंने देखा कि लोग आपको घेरे हुए थे और आपको सांसारिक लोगों से संबंधित बतलाते थे। ऐसे भी अवसर थे जब मिसेस वाइट को दो विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखलाए गए। एक में चित्रण किया गया कि कुछ योजनाओं तथा कूटनीतियों का अनुकरण करने से क्या क्या नतीजा होगा, और दूसरे दृश्य में अन्य योजनाओं तथा नीतियों का अनुकरण करने का क्या फल होगा। इसका सर्वोत्तम उदाहरण अमरीका के पश्चिमी भाग के लोमा लिंड नामक स्थान के एक स्वास्थ्य संबंधी खाद्य फैक्ट्री को स्थापन करने में मिलता है। प्रधान संचालन तथा उनके सहकारी मुख्य सैनिटोरियम भवन निकट एक बड़ी इमारत खड़ी करने की योजना कर रहे थे। जब इन योजनाओं का विकास हो ही रहा था, तो सैकड़ों मील की दूरी पर मिसेस वाइट को अपने घर पर एक रात दो दर्शन दिए गए। एक के बारे में वह कहती,
मुझे एक विशाल भवन दिखाया गया जहां नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे। बेकरी के निकट छोटे मकान थे। जब मैं पास खड़ी हुई तो क्या सुनती हूं कि उस काम के संबंध में जो हो रहा था, ऊंचे ऊंचे शब्दों में झगड़ा जैसे हो रहा है। कर्मचारियों में मेल नहीं था, इसलिए गड़बड़ी पैदा हो गई थी। तब उसने व्याकुल संचालक को अपने सहकारियों के संग मेल मिलाप के विषय में प्रयत्न करते देखा। उसने चिकित्सालय के मरीजों को देखा कि वे इस झगड़े को सुनकर खेद प्रकट करने लगे कि चिकित्सालय के निकट इस सुंदर भूमि में खाद्य फैक्ट्री स्थापन करना उचित नहीं है। तब एक जन दिखाई दिया जिसने कहा, ये सकल दृश्य वस्तुपाठ के रूप में तुमको दिखलाने सामने लाया गया है, ताकि तुम इस प्रकार की योजनाओं का फल देख सकें। तब दृश्य बदल गया और क्या देखती है कि खाद्य फैक्ट्री चिकित्सालय के मकानों से कुछ दूरी पर रेल की पटरी की ओर सड़क पर खड़ी है, जहां पर काम का प्रारंभ परमेश्वर के प्रबंध के अनुसार मामूली रीति से हुआ। दर्शन के चार घंटों के अंदर मिसेस वाइट लोमा लिंडा के कर्मचारियों को पत्र लिखने बैठी और उससे खाद्य फैक्ट्री के उचित स्थान पर बनने का प्रश्न हल हो गया। यदि उनकी प्रारंभिक योजना प्रयोग में लाई जाती तो भविष्य में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता कि ऐसी भारी व्यावसायिक इमारत चिकित्सालय के इतना निकट क्यों बनाई गई।
इस प्रकार देखा जा सकता है कि भिन्न भिन्न तरीकों से परमेश्वर के पैगंबर को दिन को व रात को दर्शनों द्वारा सूचनाएं तथा आदेश मिलते थे। प्रेरणा या दर्शन पाकर परमेश्वर की दासी बोलती व लिखती थीं और उपदेश तथा सूचनाएं लोगों को पहुंचाती थीं। इस काम में परमेश्वर का आत्मा मिसेज व्हाइट की सहायता करता था, परंतु इसमें कोई यांत्रिक नियंत्रण नहीं था। संदेश देने में शब्दों का प्रयोग उनकी इच्छा पर छोड़ा गया था। उनकी सेवा कार्य के आरंभिक काल में उन्होंने हमारी कलीसिया के समाचार पत्र में यूं लिखा, यद्यपि अपने विचारों का उल्लेख करने के लिए मैं आत्मा की सहायता पर आश्रित रहती हूं, तो भी उन दृश्यों के वर्णन करने में जो शब्दावली मैं प्रयोग करती हूं वह मेरी निजी है, सिवाय उन शब्दों के जिन्हें स्वर्गदूत ने जैसे के तैसे लिखने को कहा, जिन्हें मैं उद्धृत के चिन्ह लगाकर लिख देती हूं। मिसेज व्हाइट का जीवन और कार्य। एलन जी हार्मन और उनकी जुड़वा बहन का जन्म नवंबर 26 सन 1826 ईस्वी में अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में गिरहम मेन नामक जिले में हुआ था। जब उनकी अवस्था 9 वर्ष की हुई तो नासमझ सहपाठी ने उनको पत्थर मारा, जिससे दुर्घटना पैदा हो गई। मुख पर के घाव के कारण उनका सारा जीवन व्यर्थ सा हो गया। कमजोर होने के कारण पढ़ाई रोक देनी पड़ी। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना मन परमेश्वर को दे दिया और उनके थोड़े समय बाद उनको समुद्र में डुबकी का बपतिस्मा दिया गया। वो मेथोडिस्ट कलीसिया में शामिल हुई। अपने परिवार के अन्य मेंबरों के साथ वो पोर्टलैंड मेन में जो एडवेंटिस्ट सभा हो रही थी में जाने लगी, जहां विलियम मिलर और उनके साथ ही मसीह के द्वितीय आगमन की निकटता के संबंध में व्याख्यान दे रहे थे, जिसे उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया और सृष्टिकर्ता के आगमन के विश्वास के साथ बाट देखने लगी। सन 1844 के दिसंबर के एक प्रातः की बात है कि जब वो चार दूसरी महिलाओं के संग प्रार्थना कर रही थीं, परमेश्वर की शक्ति उनके ऊपर आई। प्रथम उनको सारी सांसारिक वस्तुओं का कुछ ज्ञान नहीं रहा, फिर लाक्षणिक दर्शन में उसने देखा कि यीशु के आगमन पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर के नगर की ओर यात्रा कर रहे थे। उनके प्रतिफल को भी देखा। डरते कांपते इस 17 वर्षीय युवती ने इस दर्शन और बाद के दर्शनों का वर्णन पोर्टलैंड के सहविश्वासियों से किया। बाद में अवसर मिलने पर उसने इस दर्शन का वर्णन मैन तथा अन्य रियासत के एडवेंटिस्ट मेंबरों से किया। सन 1846 के अगस्त महीने में एलन हार्मन का एक युवक पादरी के संग, जिसका नाम जेम्स व्हाइट था, विवाह हो गया। अगले 35 वर्षों तक मिसेज व्हाइट अपने पति के संग सुसमाचार के सेवा कार्य में बड़ी तत्परता से संलग्न रहीं। 6 अगस्त 1881 को पति की मृत्यु ने उन्हें उनसे जुदा कर दिया। उन्होंने समस्त अमेरिका की विस्तृत रूप में यात्रा की और जहां जहां वो गईं वहां वहां उन्होंने प्रचार किया, पुस्तक पत्रिकाएं लिखीं, इमारतें खड़ी की और कलीसिया स्थापन तथा शासन का कार्य किया। समय और परीक्षण ने प्रमाणित कर दिया कि एल्डर और मिसेज व्हाइट तथा उनके सहकारियों ने विस्तृत और मजबूत बुनियादें रखीं और बड़ी बुद्धिमानी तथा सुचारू रूप से उनका निर्माण किया। सन 1848 और 1850 ईस्वी में उन्होंने सब्बत मानने वाले एडवेंटिस्टों के बीच छापे खाने के काम का उद्घाटन करने में और कलीसिया की संस्था का विकास करने में मार्गदर्शन किया, जिससे मंडली की आर्थिक दशा मजबूत हो गई। यह कार्य इतने उच्च शिखर पर पहुंचा कि सन 1863 में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया की जनरल कॉन्फ्रेंस संस्था का स्थापन किया गया। हमारी कलीसिया में चिकित्सा कार्य का आरंभ 1865 व 1866 ईस्वी के बीच हुआ और शिक्षा संबंधी कार्य का आरंभ सन 1872 या 1873 के आसपास हुआ। वार्षिक कैंप मीटिंग स्थापन करने की योजना का विकास 1868 में हुआ और 1874 ईस्वी में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों ने अपना प्रथम मिशनरी विदेश को भेजा। इन सारी उन्नतियों में परमेश्वर की ओर से दिए गए मौखिक व लिखित उपदेशों ने पथ प्रदर्शन किया।
आरंभ में समाचार अधिकतर तो व्यक्तिगत पत्र के रूप में अथवा हमारे प्रथम प्रचलित समाचार पत्र प्रकाशन प्रेजेंट ट्रुथ द्वारा भेजे जाते थे। सन 1851 में मिसेज व्हाइट ने
अ स्केच ऑफ द क्रिश्चियन एक्सपीरियंस एंड व्यूज ऑफ एलन जी वाइट, एलन जी वाइट के मसीही अनुभव तथा विचारों का संक्षिप्त विवरण नामक अपनी प्रथम 64 पृष्ठीय पुस्तक छपवाई। 1855 में छोटी पुस्तिकाओं का एक सिलसिला प्रकाशित किया गया। प्रत्येक का नाम था टेस्टिमोनीज ऑफ द चर्च, कलीसिया की साक्षियां। इनके द्वारा उपदेश तथा सुधार के संदेश प्राप्त होते थे, जिन्हें परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों को आशीर्वाद देने, समझाने तथा मार्गदर्शन के निमित्त भेजना उचित समझा। इस उपदेश की निरंतर मांग की पूर्ति के लिए उसे 1885 ईस्वी 4 जिल्दों में छपवाया गया और उनमें दूसरी जिल्दों जो 1889 से 1909 में निकली उन्हें शामिल करके अब 9 जिल्दों का एक सेट तैयार हो गया, जिसे टेस्टिमोनीज फॉर चर्च, कलीसिया के लिए साक्षियां कहते हैं। वाइट दंपति के 4 बालक पैदा हुए। सबसे बड़ा हेनरी 16 वर्ष की आयु में और सबसे छोटा हर्बर्ट 3 महीने के बाद मर गया। 2 लड़के एडसन और विलियम वृद्धावस्था तक जीवित रहे और प्रत्येक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के काम में उत्सुकता से संलग्न रहे।
जनरल कॉन्फ्रेंस के प्रार्थना पत्र के उत्तर में श्रीमती मिसेज वाइट सन 1885 ईस्वी के गर्मी के मौसम में यूरोप को रवाना हुई। वहां पर उन्होंने 2 वर्ष उस महाद्वीप में नए विकसित कार्य को मजबूत किया। वैजल, स्विट्जरलैंड को निवास स्थान बनाकर उन्होंने विस्तृत रूप में दक्षिणी, मध्य तथा उत्तरी यूरोप की यात्रा की और कलीसिया के बड़े बड़े सम्मेलनों में शामिल हुई और मेंबरों से भेंट की। अमरीका में 4 साल रहने के उपरांत जनरल कॉन्फ्रेंस की बुलाहट के उत्तर में मिसेज वाइट ने 63 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया को प्रस्थान किया। वहां पर वो 9 वर्ष तक रहीं और काम को शुरू करने तथा उन्नत करने में मदद देने लगी, विशेषकर शिक्षा तथा चिकित्सा विभागों में। श्रीमती मिसेज वाइट ने सन 1900 ईस्वी में अमरीका के पश्चिमी भाग में लौटकर सेंट हलीना, कैलिफोर्निया को निवास स्थान बनाया और सन 1915 ईस्वी तक मृत्यु के समय वही रहती रहीं। मिसेज वाइट की अमरीका में 60 साल की और समुद्र पार के प्रदेशों में 10 साल की लंबी सेवा के बीच उनको 2000 दर्शन दिए गए, जिनसे व्यक्तियों, कलीसियों, सामान्य सभाओं और जनरल कॉन्फ्रेंस की सभाओं को परामर्श देने के अथक परिश्रम द्वारा इस विशाल आंदोलन को भारी उन्नति हुई। परमेश्वर प्रदत्त संदेशों को सब लोगों तक पहुंचाने का कार्य कभी उनके ख्याल से न उतरा।
उनके उल्लेखों की गिनती 1,00,000 पृष्ठों से ऊपर तक पहुंचती है। उनकी कलम से संदेश वैयक्तिक पत्र द्वारा, हमारी कलीसिया के समाचार पत्र द्वारा अथवा उनकी पुस्तकों द्वारा लोगों तक पहुंचाए जाते थे। जिन विषयों पर वो पत्र व्यवहार करती थीं, उनमें धार्मिक इतिहास, दैनिक मसीही अनुभव, स्वास्थ्य, शिक्षण, सुसमाचार तथा अन्य व्यवहारिक विषय में हुआ करते थे। उनकी 46 पुस्तकों में से कई संसार की बहुत सी प्रमुख भाषाओं में छप चुकी हैं और लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। 81 वर्ष की आयु में मिसेज वाइट ने अंतिम बार सन 1909 की जनरल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए महाद्वीप को पार किया। उनकी उम्र के बाकी 6 साल साहित्य सेवा में समाप्त हुए। अपने जीवन के अंत में मिसेज वाइट ने ये शब्द लिखे, चाहे मैं जीवित रहूं या न रहूं, मेरे उल्लेख सर्वदा बोलते रहेंगे और उनकी आवाज आगे आगे बढ़ेगी जब तक संसार रहेगा। अपने सृष्टिकर्ता पर पूर्ण विश्वास तथा बड़ी धैर्य रखते हुए उनका 23 जुलाई सन 1915 ईस्वी को अपने ही घर पर देहांत हो गया और अपने पति तथा पुत्रों की बगल में बैटल ग्रीक मिशिगन में ओक हिल कब्रिस्तान में उसको दफन किया गया।
मिसेज वाइट को सहकारियों, कलीसियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा श्रद्धापूर्ण माता और उत्साही, उदार हृदय तथा अथक धार्मिक कर्मचारिका की भांति आदर की दृष्टि से देखा जाता था। उन्होंने कलीसिया में कभी कोई पद स्वीकार नहीं किया। कलीसिया और वह स्वयं भी यह जानती थी कि वह लोगों को संदेश देने के लिए परमेश्वर की ओर से पैगंबर नियुक्त हुई है। उन्होंने कभी दूसरों से नहीं कहा कि मेरा नमूना पीछा करो,
न उन्होंने उस वरदान को अपने तई धनाढ्य बनाने अथवा ख्याति प्राप्त करने में इस्तेमाल किया। उनका जीवन एवं सर्वस्व परमेश्वर की सेवा के निमित्त अर्पित किया हुआ था। उनकी मृत्यु पर प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र द इंडिपेंडेंट के संपादक ने अगस्त 23, 1905 के प्रकाशन में उनके सफल जीवन पर अपनी टीका को इन शब्दों में समाप्त किया। वह अपने प्रकाशित वाक्यों पर विश्वास करने में बिल्कुल सच्ची थी। उनका जीवन उन प्रकाशनों के अनुकूल था। उनके अंदर कोई आत्मिक घमंड न था, न उनमें अनुचित लाभ की अभिलाषा थी। उसने एक सुयोग्य नबिया का जीवन व्यतीत किया, सुयोग्य नबिया ही के समान कार्य किए। अपनी मृत्यु के कुछ ही वर्ष पूर्व मिसेज व्हाइट ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का स्थापन किया, जिसमें कलीसिया के प्रमुख नेता सम्मिलित थे, जिनको उन्होंने अपने उल्लेख इस चेतावनी के साथ सौंपा कि वे उन्हें सुरक्षित रखें और उन्हें लगातार छपवाते रहें। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के सारी दुनिया के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी अमरीका में इस बोर्ड का दफ्तर है, जहां से वे एलन जी व्हाइट की पुस्तकों को अंग्रेजी भाषा में लगातार छपवाते रहते हैं और अन्य भाषाओं में भी आंशिक रूप में या पूर्णतः छपवाने की कोशिश करते हैं। मिसेज व्हाइट के आदेश अनुसार उन्होंने सामायिक लेखों और हस्तलिखित उल्लेखों की कई संग्रहित प्रतियां छपवाईं। इसी बोर्ड के अधिकार से यह प्रति प्रकाशित की जा रही है। मिसेज ईजी व्हाइट के प्रति लोगों का दृष्टिकोण। मिसेज व्हाइट के असाधारण अनुभवों की चर्चा सुनकर कि वह किस प्रकार परमेश्वर का दूत बन गई, किसी ने यह प्रश्न पूछा, वह किस प्रकार की महिला थी? क्या उसको भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था जैसी हमको? वह धनवान थी या कंगाल? वह कभी मुस्कुराती भी थीं कि नहीं?
मिसेज व्हाइट एक समझदार माता थीं, वह एक सावधान गृहिणी थीं, वह एक दयालु अतिथि सेविका थीं और अक्सर लोगों को अपने घर में अतिथि सेवा किया करती थीं। वह एक मददगार पड़ोसिन थीं, वह एक विश्वासी महिला थीं। स्वभाव की सुंदर, बर्ताव की सुशील तथा मधुर वाणी उसके मुख से टपकती थी। उनके अनुभव में लटकाए मुंह, मुस्कानहीन तथा आनंद शून्य मत का कोई स्थान नहीं था। उनकी उपस्थिति में हर कोई पूर्ण सुख चैन का अनुभव करता था। मिसेज व्हाइट से परिचय प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका यह होगा कि उनके घर जाकर सन 1859 की डायरी देखी जाए, जब से उन्होंने दैनिक हाल लिखना शुरू किया था। मिसेज व्हाइट, परिवार बैटल क्रीक के सिवानों में एक छोटी सी बंगलिया में रहता था, जहां भूमि का एक बड़ा भाग था, जिसमें फल के बाग लगाने, गाय तथा मुर्गियां पालने और बच्चों के काम करने तथा खेलने का अति उत्तम स्थान था। इस समय मिसेज व्हाइट को अवस्था 36 वर्ष की और एल्डर की 36 वर्ष की थी। इस समय घर में 3 बालक थे, जिनकी उम्र 4, 9 और 12 वर्ष थी। घर के काम करने के लिए एक नेक मसीही लड़की थी, क्योंकि मिसेज व्हाइट अक्सर घर से बाहर रहती थीं अथवा अपने व्याख्यान देने व लिखने के काम में संलग्न रहती थीं। फिर भी मिसेज व्हाइट परिवार के दायित्व को पूरी रीति से निभाती थीं, जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना तथा सिलाई करना इत्यादि। खास खास दिन वह छापे खाने को जाती थीं, जहां उसे लिखने के लिए एकांत जगह मिल जाती थीं। अन्य दिनों में वह बगीचे में दिखाई देती थीं, कहीं फूल लगाती थीं तो कहीं सब्जी, और कभी कभी पड़ोसिनों के साथ फूलों ही के पौधे बदलती थीं। उसे घर को मनोहर बनाने की बड़ी लगन थी, ताकि बालक घर को सबसे उत्तम जगह समझें। मिसेज व्हाइट सौदे पत्ते के मामले में बड़ी सावधान थीं, और एडवेंटिस्ट पड़ोसी ने चीजें मोल लेने के लिए उसके संग जाने की बड़ी खुश होती थीं, क्योंकि वह चीजों का मूल्य भली भांति जानती थीं। उनकी मां अति व्यवहारिक महिला थीं और उन्होंने अपनी पुत्रियों को कीमती पाठ सिखलाए थे। उनका अनुभव था कि सस्ती वस्तुएं आखिरकार खरे माल की चीजों से अधिक महंगो बैठती हैं। सस्ती रोवे बार बार, महंगी रो एक बार, इस सिद्धांत को वह मान्यता देती थीं।
बालकों के लिए सब्बत का दिन सप्ताह का सबसे सुहावना दिन बनाया जाता था।
निस्संदेह सारा परिवार उपासना में जाता था और यदि एल्डर या मिसेस व्हाइट उपदेश देने के दायित्व से मुक्त होते तो संपूर्ण परिवार पूरी उपासना में बैठा रहता। दोपहर के खाने के लिए कोई खास दिल पसंद भोजन होता था जो हफ्ते के अन्य दिनों में नहीं होता था। फिर यदि दिन सुहावना होता था तो मिसेस व्हाइट बच्चों के साथ सैर के लिए जंगल को या नदी के किनारे जाती थीं, जहां वे प्रकृति के सौंदर्य का अध्ययन करते तथा सृष्टिकर्ता के कामों का मनन करते थे। यदि दिन बारिश का या सर्दी का होता था तो वो पढ़कर सुनाया करती थीं। इन कहानियों को बाद में छपवाकर पुस्तक के रूप में बनवाया गया ताकि दूसरे माता पिता भी अपने बालकों को पढ़कर सुनाएं। इस समय मिसेस व्हाइट पूर्ण रूप से स्वस्थ न थी। अक्सर उनको दिन में मूर्छा आ जाती थी, पर इससे न उनके घर के काम में और न परमेश्वर के काम में बाधा हुई। इसके कुछ साल बाद सन 1863 ईस्वी में उनको स्वास्थ्य तथा रोगियों की सुरक्षा के संबंध में दर्शन दिया गया। उनको दर्शन में दिखलाया गया कि सुदृढ़ और स्वस्थ देह प्राप्त करने के लिए यथोचित वस्त्र पहनने, उचित भोजन करने, व्यायाम और विश्राम करने की तथा परमेश्वर पर भरोसा रखने की बड़ी आवश्यकता है।
आहार तथा हानिकारक मांसाहार के संबंध में मिसेस व्हाइट को जो प्रकाश परमेश्वर की ओर से दिया गया उसने इस मत का खंडन कर दिया कि स्वास्थ्य तथा बल प्राप्ति के लिए मांस खाना अत्युत्तम है। उनके मन को प्रकाशित करने के लिए जो दर्शन दिया गया था उसके बल पर उसने भोजन पकाने वाली लड़की को आदेश दिया कि मेज पर केवल इन चीजों को रखे जो स्वास्थ्यवर्धक सरल भोजन हों, जो अनाज, सब्जी, मेवे, दूध, मलाई तथा अंडों से तैयार किए गए हों। फलों की कोई कमी नहीं रही थी। जब परिवार के लोग मेज पर आते तो अच्छा स्वास्थ्यप्रद भोजन अधिक मात्रा में रखा हुआ पाते थे, परंतु मांसाहार का कोई नाम नहीं। मिसेस व्हाइट को मांस खाने की बड़ी तृष्णा थी। उन्होंने मेज से उठ जाने का निश्चय कर लिया कि जब तक साधारण भोजन खाने की आदत ना पड़ जाए तब तक ना लौटूंगी। दूसरी बार भी यही किस्सा रहा, परंतु सादा भोजन उनको पसंद ना आया। फिर भोजन की बारी आई। मेज पर वही सादे पदार्थ थे जो उन्हें दर्शन में दिखलाए गए थे कि स्वास्थ्य, बल और वृद्धि के लिए ये ही उत्तम पदार्थ हैं, परंतु उन्हें तो भूख थी मांस खाने की, जिसकी वो आदि हो चुकी थीं। पर अब वो सीख गईं कि मांस कोई उत्तम भोजन नहीं है। वो हमसे कहती है कि उसने अपने पेट पर हाथ रखकर ये शब्द कहे थे, जब तक तुम रोटी खाना नहीं सीखोगे जब तक तुम्हें ठहरना होगा।
अधिक समय नहीं बीता कि मिसेस व्हाइट भोजन से सादे पदार्थों का आनंद लेने लगी और खुराक पथ्य में परिवर्तन होने से उनके स्वास्थ्य में भी तुरंत सुधार हो गया और उनके शेष जीवन में तुलनात्मक रूप में स्वास्थ्य अच्छा रहा। इस तरह देखा जा सकता है कि मिसेस व्हाइट की समस्याएं ऐसी थीं जैसी प्रत्येक मनुष्य की हुआ करती है। उनको क्षुधा पर जय पाना इतना जरूरी था जितना हम सबको जरूरी है। मिसेस परिवार को स्वास्थ्य सुधार एक ऐसा वरदान सिद्ध हुआ है जिस प्रकार ये दुनिया के हजारों एडवेंटिस्ट परिवारों के लिए सिद्ध हुआ है। स्वास्थ्य सुधार संबंधी दर्शन पाने तथा मिसेस व्हाइट परिवार में बीमारों की चिकित्सा के साधारण नियमों को अपनाने के बाद एल्डर और मिसेस व्हाइट को अक्सर पड़ोसी लोग बीमारी के समय चिकित्सार्थ बुलाया करते थे और परमेश्वर उनके परिश्रमों को आशीर्वाद दिया करता था। कभी कभी रोगी उनके घर पर ही आ जाया करते थे और उनका इलाज किया जाता था जब तक वे पूर्णतः चंगे नहीं हो जाते थे। मिसेस व्हाइट चाहे पहाड़ पर हों अथवा झील पर, वह खुले पानी पर आराम अथवा मनोरंजन की अवधि का आनंद उपभोग करती थीं। अधेड़ उम्र में जब वह अमरीका के पश्चिम भाग में पैसिफिक प्रेस हमारे एक छापे खाने के समीप रहती थीं, वहां ये प्रस्ताव रखा गया कि विश्राम व मनोरंजन के लिए एक दिन नियुक्त हो। मिसेस व्हाइट को परिवार तथा दफ्तर के लोगों के साथ छापे खाने के कर्मचारियों द्वारा निमंत्रण दिया गया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उनके पति मिशन के काम के लिए पूर्व दिशा को गए हुए थे। इस अनुभव का पता
पति को लिखी गई उनकी चिट्ठी से लगता है।
समुद्र के किनारे दोपहर के स्वास्थ्यवर्धक भोजन के बाद समस्त समुदाय सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में सैर करने निकला। उस किश्ती का कप्तान कलीसिया का मेंबर था, फिर तो अपरांत आनंद से कटा। फिर ये प्रस्ताव हुआ कि समुद्र के बीच चलें। उस समय के अनुभव का वर्णन करते हुए मिसेस वाइट ने लिखा, लहरें आकाश की ओर उठ रही थीं और हम बड़ी शान से ऊपर नीचे उछलते जा रहे थे। मुझे इतना अधिक आनंद आ रहा था कि मेरे पास बतलाने को शब्द नहीं है। ये तो अत्यंत उत्कृष्ट था। समुद्र का फेन हमारे ऊपर टकराता था। सुनहले फाटक के बाहर हवा तेज थी, पर जिंदगी में ऐसा मजा कभी ना आया था। कप्तान की सतर्क आंखों तथा माझियों की आज्ञा पालन में तत्परता देखकर यो सोचने लगी, परमेश्वर हवाओं को अपने हाथों में थामता है, वो जल को अपने नियंत्रण में रखता है। हम पैसिफिक महासागर में तिनके की तरह हैं, तो भी स्वर्गीय दूत इस छोटी सी किश्ती की रक्षा करने को भेजे गए हैं जब वो लहरों में चल रही है। परमेश्वर की लीला अपार है और हमारी समझ से बाहर है। एक ही नजर में वो स्वर्ग को भी देखता है और समुद्र के बीच को भी। मिसेस वाइट बचपन ही से प्रसन्नचित रहती थी। एक समय उसने लोगों से पूछा, क्या आपने मुझे कभी उदास, निराश अथवा शिकायत करते देखा? मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। मसीही चरित्र व सेवा के सच्चे आदर्श का मिथ्या विचार ही इन परिणामों तक पहुंचाता है। मसीही की सेवा जब तन मन धन से की जाती है, तब वो एक उज्ज्वल धर्म का निर्माण करती है। जो ध्यान से मसीह का अनुकरण करते हैं, वे उदासी को नहीं जानते।
फिर दूसरी बार उन्होंने लिखा, कुछ लोगों का विचार है कि प्रसन्न मुद्रा मसीही चरित्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, परंतु यह भूल है। स्वर्ग में सर्वांगीण आनंद है। उन्होंने मालूम किया कि मुस्कान के बदले मुस्कान और मधुर शब्दों के बदले मधुर शब्द मिलेंगे। इतना होते हुए भी ऐसे समय आए जब उन्हें यातनाएं सहनी पड़ी। एक वक्त जब वह ऑस्ट्रेलिया के काम में मदद देने गई थीं, तब वहां वह प्राय एक साल तक बीमार रही और बड़ा कष्ट उठाया। अधिकांश समय वह पलंग पर लेटी रहती थीं और रात के केवल चंद ही घंटे सो सकती थीं। इस अनुभव के विषय में उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा, जब मैंने अपने को लाचारी की हालत में पाया तो मुझे अत्यंत खेद हुआ कि मैं सात समुद्र पार क्यों आई। मैं अमरीका ही में क्यों न रही? इतना खर्च उठा के मैं क्यों इस देश में आई? बार बार मैं अपना मुंह रजाई में छिपाकर खूब रोती थी, परंतु मैं अधिक देर तक आंसू नहीं बहाती रही। मैंने अपने आप से पूछा, हे एलन जी वाइट, यह क्या बात है? क्या तुम ऑस्ट्रेलिया यह विचार करके नहीं आई कि कॉन्फ्रेंस जहां उन्हें भेजे वहां जाना उचित है? क्या यह तुम्हारा दस्तूर नहीं रहा है? मैंने उत्तर दिया, हां, यही मेरा अभ्यास रहा है। तो तुम फिर इतना उदास व खिन्न क्यों हो? क्या यह शत्रु का कार्य नहीं है? मैंने उत्तर दिया, मैं समझती हूं यह उसी की कार्यवाही है।
मैंने जितना जल्दी हो सका अपने आंसू पोंछे और कहा, ये काफी है, इसके बाद मैं अंधेरी तरफ ना देखूंगी। जीती रहूं या मर जाऊं, मैं अपने प्राणों की रक्षा का प्रश्न उसी पर छोड़ दूंगी जिसने मेरे लिए अपने प्राण दिए हैं। तब मैं विश्वास करने लगी कि परमेश्वर जो कुछ भी करेगा भलाई के लिए ही करेगा। तत्पश्चात 8 महीने की लाचारी के दरमियान मेरे मन में न उदासी छाई न संदेह पैदा हुआ। अब मैं इस मामले को इस प्रकाश में देखती हूं कि मेरी भलाई और अमरीका के लोगों की भलाई तथा इस देश के लोगों की भलाई के लिए ये परमेश्वर की उस बड़ी योजना का एक अंग था। मैं इसका कारण समझा नहीं सकती, परंतु विश्वास करती हूं। मैं दुख में खुश हूं। मैं अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखती हूं। मैं उसके प्रेम पर संदेह न करूंगी।
जब मिसेस वाइट अपने जीवन के अंतिम 15 सालों में अपने घर कैलिफोर्निया में रहती थीं, वह बूढ़ी तो बेशक होती जा रही थीं, परंतु अपने छोटे से खेत के आसपास के काम में रुचि लेती थीं, और जो लोग उनके काम में मदद देते थे उनके परिवारों में वो दिलचस्पी लेती थीं। हम उनको लिखने के काम में संलग्न पाते।
अक्सर जब वो जल्दी सो जाती थीं, तो आधी रात के बाद काम शुरू कर देती थीं। यदि दिन अच्छा होता था और काम आज्ञा देता तो वो देहात में सैर को निकल जाती और किसी भी बगीचे में काम करती हुई अथवा घर के आंगन में बैठी हुई माताओं से बातें करने ठहर जाती थीं। कभी कभी वो ऐसे लोगों को पाती थीं जिन्हें भोजन या वस्त्र की जरूरत होती थीं, तो वो घर आकर अपने सामान में से उनके लिए चीजें ले जाती थीं। उनकी मृत्यु के बहुत वर्षों बाद तक उस घाटी की पड़ोसिनें उन्हें याद किया करती थीं कि एक छोटे सफेद बालों वाली महिला उन्हें बड़े प्रेम से यीशु की कहानी सुनाया करती थीं। जब उनका देहांत हुआ तो उनके पास जीवन की जरूरी तथा सुखदायक वस्तुओं से कुछ ही अधिक था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा उदाहरण अपनाऊं, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट थीं, जो अपने जीवित प्रभु के सद्गुणों पर विश्वास रखती थीं और परमेश्वर के सौंपे हुए कार्य को यथाशक्ति विश्वास के साथ करती थीं। इस प्रकार उसने मसीह पर अपना जीवन निछावर करके अपनी मसीही अनुभूति पर दृढ़ रहकर अपने जीवन की पूर्ण अवधि को समाप्त किया। संदेशों ने जीवन में परिवर्तन डाल दिया।
एक उपदेशक ने बुशनेल मिशिगन में व्याख्यानों का सिलसिला शुरू किया। बपतिस्मा के पश्चात वह विश्वासियों को कर्म में मजबूत बनाए बिना ही शीघ्र चला गया। लोग निरुत्साह हो गए और धीरे धीरे पुरानी आदतों में फिर फंस गए। निदान मंडली इतनी छोटी हो गई कि रहे सहे 10 या 12 सदस्यों ने भी निश्चय कर लिया कि इस तरह जारी रखने में कुछ लाभ न होगा। आखिरी मीटिंग से विदा होने के बाद डाक आई और चिट्ठियों में रिव्यू एंड हेरल्ड समाचार पत्र भी आया। दौरे के रवाने में एक सूचना दी हुई थी कि एल्डर और मिसेस वाइट 20 जुलाई 1867 को बुशनेल की सभा में उपस्थित होंगे। एक ही हफ्ता रह गया था। घर जाते हुए लोगों को वापस बुलाने के लिए बालकों को भेजा गया। यह तय हुआ कि किसी बाग में मीटिंग का बंदोबस्त करें और प्रत्येक अपने पड़ोसियों को सभा में आने का निमंत्रण दे, विशेषकर उन लोगों को जो लौट गए थे। सब्बत के दिन 20 जुलाई को एल्डर और मिसेस वाइट बाग में पधारे, जहां 60 स्त्री पुरुष उपस्थित हुए थे। सुबह के समय एल्डर वाइट ने उपदेश दिया। अपराह्न की मीटिंग में बोलने के लिए मिसेस वाइट उठीं। बाइबल के पद पढ़े जाने के पश्चात वह व्याकुल दिखाई दी। बिना टीका टिप्पणी के वे बाइबल को बंद करके उनसे व्यक्तिगत रूप में वार्तालाप करने लगी। आप लोगों के सामने खड़ी होकर मैं उन लोगों के चेहरों को देख रही हूं जो 2 वर्ष हुए दर्शन में मुझे दिखलाए गए थे। आप लोगों के मुखों को देखकर मेरे सामने आपके अनुभव स्पष्टता से नजर आ रहे हैं। इस संबंध में परमेश्वर की ओर से मेरे पास आपके लिए एक संदेश है।
चीड़ के पेड़ के पास ये भाई है। मुझे आपका नाम नहीं मालूम, क्योंकि आपका परिचय मुझसे नहीं कराया गया है, परंतु आपके चेहरे से मुझे जानकारी है और आपका अनुभव मेरे सामने दिखता है।
तब उन्होंने इस भाई से उसके धर्म से फिर जाने का वर्णन किया। उन्होंने उसको प्रोत्साहन दिया कि वो वापस आए और परमेश्वर के लोगों के संग संग चले। फिर एक बहन की ओर फिरकर कहा, ये बहन जो ग्रीनविल कलीसिया की बहन मेनार्ड के पास बैठी है, मैं आपका नाम नहीं बता सकती हूं, पर 2 वर्ष हुए आपका मामला दर्शन में मेरे सामने आया था और आपके अनुभव से मुझे भली भांति परिचय कराया गया है। तब मिसेस वाइट ने उसको ढाढ़स दिलाया, एक और भाई जो बलूत के पेड़ के पास बैठा है, मैं आपका भी नाम नहीं जानती हूं, क्योंकि मेरी आपसे अब तक मुलाकात नहीं हुई, परंतु आपका सारा हाल मुझे खूब मालूम है। तब उन्होंने इस भाई के बारे में बतलाया और उसके मन के विचारों तथा अनुभवों पर प्रकाश डाला।
इस प्रकार उस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का वर्णन उस दर्शन के अनुसार किया जो उन्हें 2 वर्ष पूर्व दिखलाया गया था। जब वो अपना उपदेश, जिसमें न केवल ताड़ना ही किंतु प्रोत्साहन व ढाढ़स के शब्द थे, समाप्त कर चुकी तो बैठ गईं। उस सभा में से एक उठकर बोला, मुझे शंका है कि जो कुछ बहन वाइट ने इस सांझ को कहा है सत्य है। उनको हमसे जान पहचान नहीं है। बहन वाइट कई लोगों के नाम तक नहीं जानती, तो भी वो बतलाती है कि 2 वर्ष बीते उनको दर्शन में हमारा सारा कच्चा चिट्ठा दिखलाया गया।
फिर एक एक करके वो व्यक्तिगत रूप में हमसे बातें करती हैं और हमारे जीवन चरित्र तथा आंतरिक विचारों पर प्रकाश डालती हैं। क्या ये 16 आने सच है या बहन व्हाइट ने कोई भूल की है? मैं ये जानने का इच्छुक हूं। लोग एक एक करके उठ खड़े हुए। चीड़ के पेड़ के पास बैठा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बहन व्हाइट ने मेरा सारा हाल ऐसा स्पष्ट बतलाया है कि मैं स्वयं भी ऐसा ना बतला सकता। उसने अपनी हठधर्मी को मान लिया। उसने वापस आने और परमेश्वर के लोगों संग संग चलने का निश्चय किया। ग्रीनविल कलीसिया की मेनार्ड बहन के पास बैठी महिला ने भी साक्षी दी कि बहन व्हाइट ने मेरा अनुभव मुझसे बेहतर ढंग से वर्णन किया है। बलूत के वृक्ष के पास बैठा व्यक्ति, जिसको बहन व्हाइट ने ताड़ना व ढाढ़स के वचन कहे थे, बोला कि बहन व्हाइट ने मेरे मामले को मुझसे उत्तम ढंग से वर्णन किया है। अब तो सब ने अपनी गलतियों को मान लिया, पापों को अपने से पृथक किया और परमेश्वर का आत्मा हृदयों में आया और बुशनेल में नई जागृति उत्पन्न हो गई।
अगले सब्बत को एल्डर और मिसेज व्हाइट वापस आए और उस समय एक व्यक्ति का बपतिस्मा हुआ और बुशनेल की कलीसिया का पूर्ण रूपेण स्थापन हो गया और फूलती फलती रही। परमेश्वर बुशनेल के लोगों को प्यार करता था जिस तरह वो उन सबको प्यार करता है जो उसकी ओर ताकते हैं। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना व ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। प्रकाशित वाक्य 3:19 के वाक्य उनको जो उपस्थित थे अवश्य स्मरण आए होंगे। जब लोगों ने अपने हृदयों को उस प्रकाश में देखा जिसमें परमेश्वर देखता है, तो उन्होंने अपनी दशा को पहचान और अपने हृदयों में परिवर्तन की इच्छा प्रकट की। अनेक दर्शनों के दिए जाने का सच्चा अभिप्राय यही था। एल्डर व्हाइट के देहांत के पश्चात मिसेस व्हाइट हीलवर्थ कॉलेज के समीप रहने लगी। कई युवतियां उनके घर में रहती थीं जहां से वे स्कूल जाया करती थीं। उन दिनों का दस्तूर था कि बालों को स्वच्छ तथा सुडौल रखने के लिए जाली नेट लगाया करते थे। एक दिन मिसेस व्हाइट के कमरे से गुजरते हुए एक युवती ने उत्तम रीति से बनी हुई एक हेयर नेट बालों की जाली को देखा, जिसे देखकर उसके दिल में लालच आ गया। ये सोचने पर कि मिसेस व्हाइट को उसके खो जाने का पता नहीं चलेगा, उसने उसे उठाकर अपने ट्रंक में रख दिया। थोड़ी देर बाद बाहर जाने के लिए जब मिसेस व्हाइट कपड़े पहनने तथा अपने को संवारने लगीं, तो अपनी जाली को न पाकर वैसे ही चली गईं। संध्या के समय जब सब परिवार के लोग इकट्ठे हुए, तो उन्होंने खोई हुई जाली के विषय में पूछताछ की, पर किसी ने न बतलाया।
दो एक दिन बाद जब मिसेस व्हाइट उस लड़की के कमरे से गुजर रही थी, तो एक आवाज ने उनसे कहा, क्योंकि ट्रंक उनका नहीं था इसलिए वे झिझकी। दूसरी आज्ञा पर उन्होंने पहचाना कि ये तो स्वर्गदूत की आवाज है। जब उन्होंने बक्स का ढक्कन उठाया, तो याद किया कि स्वर्गदूत ने क्यों उनसे दोबारा कहा था, क्योंकि जाली तो वहीं थी। जब परिवार फिर मिला, तो मिसेस व्हाइट ने जाली के बारे में फिर पूछा कि वो स्वयं तो गायब नहीं हो सकती। फिर भी किसी ने नहीं कबूल किया, तो उन्होंने मामला वैसा ही छोड़ दिया। थोड़े दिनों के पश्चात जब मिसेस व्हाइट लिखने के कार्य से थोड़ा अवकाश लेने लगीं, तो उनको एक छोटा सा दर्शन दिखलाया गया। देखती क्या हैं कि एक लड़की हेयरनेट को लैंप में झुका रही है। जाली में आग लग गई और उसकी लपट से खत्म हो गई। दर्शन भी समाप्त हो गया। जब परिवार फिर इकट्ठा हुआ, तो मिसेस व्हाइट ने हेयरनेट के लापता होने का मामला फिर छेड़ा। फिर भी कोई इकरार नहीं सुनाई दिया, न किसी को उसका पता कि वो है कहां। थोड़ी देर के बाद मिसेस व्हाइट ने इस युवती को एक और बुलाया और उसको उस आवाज के बारे में और ट्रंक के अंदर जो कुछ उन्होंने देखा था सब बतलाया और उस छोटे दर्शन का भी वर्णन किया जिसमें उन्होंने जाली को लैंप के ऊपर जलते देखा। इस सूचना के प्राप्त होने पर उस युवती ने मान लिया कि जाली उसी ने ली थी और पकड़े जाने के डर से उसे आग में जला डाला। उस युवती ने मिसेस व्हाइट से और परमेश्वर से माफी मांगकर मामले को ठीक ठाक कर लिया।
शायद हम सोचें कि परमेश्वर के निकट ये तो मामूली बात है, हेयरनेट ही की तो बात है, परंतु मामला केवल चोरी गई वस्तु से कहीं अधिक महत्व का था। ये युवती तो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया की सदस्य थी। वो समझती थी कि वो अच्छी लड़की थी,
परंतु उसने अपने चाल चलन के अवगुण नहीं देखे थे। उसने स्वार्थ को नहीं देखा था, जिसके कारण वो चोरी करने तथा धोखा देने पर उद्यत हुई। जब उसने ये महसूस किया कि छोटी छोटी बातें भी इतना महत्व रखती हैं कि परमेश्वर अपने व्यस्त संवाददाता को केवल एक बालों की जाली के विषय में भी दर्शन दिखलाता है, तो ये युवती अब मामलात को उनके सच्चे प्रकाश में देखने लगी। इस अनुभव से उसके जीवन में भारी परिवर्तन आ गया। तत्पश्चात वो एक अच्छा मसीही जीवन व्यतीत करने लगी। यही कारण है कि मिसेज व्हाइट को दर्शन दिए गए थे। यद्यपि मिसेज व्हाइट की लिखित साक्षियों का विशेष लगाव होता था, तो भी वे उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करती थीं जो संसार के प्रत्येक देश की कलीसियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। मिसेज व्हाइट ने साक्षियों के अभिप्राय तथा स्थान को इन शब्दों में स्पष्ट कर दिया है।
लिखित साक्षियों का ध्येय नया प्रकाश देना नहीं है, परंतु उन सत्यों को स्पष्टता से हृदय पर अंकित करने का है जो प्रेरणा द्वारा पहले प्रकाशित हो चुके हैं। परमेश्वर के वचन में मनुष्य का कर्तव्य कर्म परमेश्वर की ओर तथा भाई बंधु की ओर सफाई से दर्शाया गया है, परंतु थोड़े हैं जो उस प्रकाश के आज्ञाकारी हैं। कोई नया सत्य नहीं दिया गया है, परंतु परमेश्वर ने लिखित साक्षियों द्वारा उन महान सत्यों को जो प्राप्त हो चुके हैं सरल किया है। साक्षियां धर्म पुस्तक के पलड़े को हल्का नहीं करतीं, परंतु उसके मान को बढ़ाती हैं और मन को उसकी ओर आकर्षित करती हैं, ताकि सत्य की सुंदर साधारणता सबको रुचिकर लगे। जीवन भर मिसेज व्हाइट ने परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक इस विचार के साथ समाप्त की। उन्होंने कहा, प्रिय पाठक, मैं सिफारिश करती हूं कि परमेश्वर का वचन आपके विश्वास और आचरण की व्यवस्था है। हमारा न्याय इसी वचन द्वारा किया जाएगा। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने अंतिम दिनों में दर्शन दिखलाने की प्रतिज्ञा की है। धर्म के नए माप के लिए नहीं, परंतु उन लोगों के ढाढ़स और सुधारक के हेतु जो बाइबल के सत्य से भटक जाते हैं। दर्शन जिसका वर्णन नहीं किया जा सका।
सन 1890 ईस्वी के नवंबर मास में, जब सालेमंका न्यूयॉर्क में सभाओं का सिलसिला जारी थी और मिसेज व्हाइट सार्वजनिक सभा में उपदेश दे रही थीं, तो बहुत कमजोर हो गईं, क्योंकि यात्रा में उनको जोर से सर्दी लग गई थी। वह मीटिंग से निरुत्साह तथा अस्वस्थ सी होकर अपने कमरे को चली आईं। वो अपने को परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने तथा अनुग्रह, स्वास्थ्य और बल के लिए सोचने लगी थी। कुर्सी के पास घुटने टेक कर झुकी, फिर जो कुछ हुआ उन्होंने अपने शब्दों में कहा। मैं एक शब्द भी न कहने पाई थी कि समस्त कमरा रोशनी से जगमगा गया और निरुत्साह व निराशा के बादल दूर हो गए। मेरा मन शांति और आशा यीशु की शांति से भर गया। फिर उसको एक दर्शन दिया गया। दर्शन के बाद उन्होंने न सोना चाहा और विश्राम करना। वह स्वस्थ हो गई और विश्राम भी मिल गया।
प्रातः को निर्णय जरूरी देना था।
क्या वह उस स्थान को जा सकेंगी जहां मीटिंग अब शुरू होगी, या अपने घर बैटल क्रीक को लौट जावेंगी? एल्डर एटी रॉबिन्सन, जो काम के जिम्मेदार थे, और मिसेज व्हाइट के पुत्र एल्डर विलियम व्हाइट उनके कमरे में उत्तर जानने के लिए आए कि उनका क्या उत्तर होगा। उन्होंने उसे सुंदर वस्त्र पहने और स्वस्थ दशा में पाया, जैसा कि वो कहीं जाने को तैयार थी। उन्होंने अपने चंगे होने का वर्णन किया। उन्होंने दर्शन का भी वर्णन सुनाया। कहने लगी, मैं आप लोगों को बतलाना चाहती हूं कि मुझे कल रात क्या क्या दिखलाया गया। दर्शन में बैटल क्रीक पहुंची प्रतीत हुई। स्वर्गदूत ने कहा, मेरे पीछे हो लो। इतना कहकर वो जरा हिचकिचाई और याद न कर सकी। दोबारा उन्होंने बतलाने की कोशिश की, परंतु जो कुछ उन्हें दिखाया गया था याद न कर सकी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने इस दर्शन को लिखा। ये दर्शन धार्मिक स्वतंत्रता नामक पत्र के लिए बनाई जा रही योजनाओं के बारे में था, जिसको उन दिनों अमेरिकन सेंटिनल कहते थे। रात के दर्शन में मैं कई सभाओं में उपस्थित हुई थी। वहां मैंने प्रभावशाली लोगों के मुंह से बार बार ये शब्द सुने। यदि अमेरिकन सेंटिनल अपने स्तंभ से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट शब्दों को निकाल दे और सब्बत के विषय में मौन रहे, तो संसार के बड़े बड़े लोग इसको अपनाने लगेंगे और ये पत्र ख्याति प्राप्त करेगा और एक भारी काम करने योग्य होगा।
ये सलाह उन्हें बहुत पसंद आई।
मैंने देखा कि उनके मुखड़े प्रसन्न हो गए। वे ऐसी युक्ति निकालने लगे थे जिससे सेंटिनल सफलता प्राप्त करे। ये सारा मामला ऐसे लोगों ने प्रस्तुत किया जिन्हें स्वयं अपने हृदय तथा आत्मा में सच्चाई की आवश्यकता थी। यह स्पष्ट है कि मिसेज व्हाइट ने एक समुदाय को इस पत्र की संपादकीय नीति के विषय में वाद विवाद करते देखा। जब जनरल कॉन्फ्रेंस मार्च सन 1891 में एकत्र हुई तो मिसेज व्हाइट से निवेदन किया कि वह कर्मचारियों को 5:30 बजे व्याख्यान दें और 4,000 व्यक्तियों को भरी कॉन्फ्रेंस को सब्बत की शाम को उपदेश दें। उनके शास्त्र का पाठ सब्बत की शाम ये थी, वैसे ही तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के आगे चमके। संपूर्ण उपदेश सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों के प्रति एक अपील थी कि वे अपने विश्वास के विशेष सिद्धांतों को थामे रहें। व्याख्यान के मध्य में 3 बार उन्होंने सालेमका के दर्शन का वर्णन करना शुरू किया, परंतु प्रत्येक बार वो रुक गईं। दर्शन की घटनाएं स्मरण शक्ति से जाती रहीं। तब उन्होंने कहा, इसके बारे में मैं बाद में अधिक वर्णन करूंगी। उन्होंने अपने व्याख्यान को 1 ही घंटे के अंदर सुंदरता से समाप्त कर दिया और मीटिंग का अंत हुआ। सबको ये बात प्रत्यक्ष हो गई कि वो दर्शन को स्मरण करने के अयोग्य है। जनरल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट ने आकर उनसे विनती की कि वो सुबह की मीटिंग का नेतृत्व करें। उन्होंने कहा, नहीं, मैं थक गई हूं, मैं अपनी साक्षी दे चुकी, आप सुबह की मीटिंग का कुछ और प्रबंध करें। अतः दूसरे प्रबंध किए गए।
जब मिसेज व्हाइट अपने घर लौटी तो उसने परिवार के सदस्यों से कहा कि वो सुबह की सभा में सम्मिलित न हो सकेगी। वो पूर्ण विश्राम लेना चाहती थीं। वो इतवार की सुबह तक सोना चाहती थीं। तदनुसार ऐसा बंदोबस्त किया गया। उसी रात कॉन्फ्रेंस की बैठक के समाप्त होने पर एक छोटे दल को रिव्यू एंड हेरल्ड भवन के किसी दफ्तर में बैठक हुई। उस मीटिंग में छापे खाने की ओर से अमेरिकन सेंटिनल पत्रिका के तथा रिलीजियस लिबर्टी एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। वे एक पेचीदा प्रश्न पर वाद विवाद तथा निर्णय करने को इकट्ठे हुए थे, अर्थात अमेरिकन सेंटिनल की संपादकीय नीति पर। अब तो दरवाजे बंद कर दिए गए और सब ने निश्चय किया कि जब तक प्रश्न तय न हो तब तक दरवाजा न खोला जाए। इतवार की सुबह 3 बजे से थोड़ा पहले सभा समाप्त हुई, परंतु किसी निर्णय को न पहुंच सकी। मामला ज्यों का त्यों हो रहा। उसमें रिलीजियस लिबर्टी के प्रतिनिधियों की ओर से यह संकेत था कि जब तक पैसिफिक प्रेस उनकी मांग पूरी न करे और पत्रिका के स्तंभ में सेवंथ डे एडवेंटिस्ट और सब्बत को निकाल न दे, वे उसको रिलीजियस लिबर्टी एसोसिएशन का अंग मान के कभी उपयोग में न लाएंगे। इसका अर्थ पत्रिका की हत्या करना था। उन्होंने दरवाजे खोले और लोग अपने कमरों में जाकर सो गए।
परंतु परमेश्वर ने, जो न कभी ऊँघता न सोता है, अपने दूत को एलन व्हाइट के कमरे में 3 बजे सुबह को भेजा, उनको नींद से जगाया और आदेश दिया कि वो कर्मचारियों की सभा में 5:30 बजे हाजिर हों और सालेमंका के दर्शन का वर्णन करें। कपड़े पहनकर वो अपने दफ्तर को गईं और उस पत्रिका को साथ लिया जिसमें उन्होंने सालेमंका के दर्शन का उल्लेख किया था। जब दृश्य उनकी आंखों के सामने स्पष्टता से आए तो उन्होंने उसमें और वृद्धि की जो उससे संबंधित था। पादरी लोग प्रार्थना से उठ ही रहे थे कि मिसेज व्हाइट हस्तलिखित पुस्तकें बगल में दबाए दरवाजे के अंदर आती दिखाई दीं। जनरल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट उस सभा के वक्ता थे। उन्होंने उनसे निवेदन किया, बहन व्हाइट, हम आपको देखकर अत्यंत हर्षित हैं। उन्होंने कहा, क्या आपके पास हमारे लिए कोई संदेश है? उन्होंने उत्तर दिया, बेशक मेरे पास संदेश है। ये कहकर वो सामने गईं। तब उन्होंने उसी जगह शुरू किया जहां पहले दिन छोड़ दिया था। उन्होंने कहा, आज 3 बजे सुबह उनकी नींद से जगाया गया था और आदेश दिया गया कि 5:30 बजे की मीटिंग में हाजिर होकर सालेमंका के दर्शन को पेश करो।
उन्होंने कहा, दर्शन में ऐसा ज्ञात हुआ कि मैं बैटल क्रीक में हूं। मुझको रिव्यू एंड हेरल्ड के दफ्तर को ले जाया गया और संदेश देने वाले दूत ने मुझे आज्ञा की कि मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुझे उस कमरे में लाया गया जहां एक समुदाय अति उत्सुकता से एक विषय पर वाद विवाद कर रहा था। उनमें उत्साह था,
पर ज्ञान के अनुसार नहीं। उन्होंने बतलाया कि अमेरिकन सेंटिनल की संपादकीय नीति पर ये लोग किस प्रकार बहस कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने एक व्यक्ति को सेंटिनल की प्रति को अपने सिर से ऊपर उठाकर यह कहते देखा कि जब तक सब्बत और दूसरे आगमन जैसे लेख इस पत्रिका से न निकाल दिए जाएं, इस पत्रिका को रिलीजियस लिबर्टी एसोसिएशन के अंग के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। एलन व्हाइट एक घंटे तक व्याख्यान देती रही और उस मीटिंग का वर्णन करती रही जो दर्शन में कई महीने पहले दिखलाई गई थी और उसी प्रकाश के आधार पर परामर्श देती रहीं। इतना कहकर वो बैठ गई।
जनरल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट इसके विषय में कुछ विचार न कर सके। उन्होंने तो ऐसी मीटिंग का कभी नाम तक नहीं सुना था। परंतु उनको इस बात को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी क्योंकि एक व्यक्ति कमरे के पिछले भाग में खड़ा होकर कहने लगा, कल रात मैं उस मीटिंग में उपस्थित था।
बहन व्हाइट, कल रात? कल रात? दर्शन से मुझे ऐसा लगा कि ये सभा कई महीने पहले बैठ चुकी थी, उस व्यक्ति ने कहा। कल ही रात मैं उस बैठक में उपस्थित था और मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने उस पत्रिका को सिर से ऊपर उठा के उसके विषयों की आलोचना की थी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैं गलत रास्ते पर था, परंतु मैं इस अवसर को मूल्यवान समझकर अपने को सत्य मार्ग पर लाता हूं। ये कहकर वो बैठ गया। दूसरा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। वे रिलीजियस लिबर्टी एसोसिएशन के सभापति थे। उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं उस बैठक में था। कल रात कॉन्फ्रेंस के समाप्त होने के बाद हम में से कई एक रिव्यू ऑफिस के एक कमरे में जमा हुए थे और दरवाजा बंद करके हम उन प्रश्नों तथा मामलों पर वाद विवाद करते रहे थे जो आज सुबह हमारे सामने उपस्थित किए गए। इस कमरे में हम सुबह की 3 बजने तक रहे। यदि मैं उन घटनाओं का और कुछ लोगों की व्यक्तिगत भावनाओं का वर्णन सुनाने लगूं तो मैं ऐसे सही ढंग से कभी वर्णन नहीं कर सकता जिस प्रकार बहन व्हाइट ने बतलाया है। मैं अभी देखता हूं कि मैं गलती पर था और मेरे उस समय के विचार ठीक नहीं थे। इस दृश्य पर जो प्रकाश आज दिया गया है उससे प्रभावित होकर मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने गलत राह अपनाई थी।
उस दिन और लोग भी बोले, पिछली रात जितने उस बैठक में थे। प्रत्येक ने उठकर अपनी अपनी साक्षी दी और एलन व्हाइट ने उस सभा का और उस कमरे के उपस्थित लोगों की भावनाओं का सही सही वर्णन किया है। उस इतवार की सुबह की मीटिंग समाप्त होने से पूर्व रिलीजियस लिबर्टी के दल ने जमा होकर 5 घंटे पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को रद्द किया। यदि मिसेस व्हाइट को रोका न जाता और यदि वह सब्बत की शाम को उस दर्शन का वर्णन कर दिया होता तो उनके संदेश से मनोरथ पूरा न हो पाता जिसे परमेश्वर चाहता था, क्योंकि वह बैठक तो अभी हुई भी न थी। तो भी जो साधारण परामर्श उस सब्बत के अपरान को दिया गया था, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे आज लोग करते हैं, वैसा उन लोगों ने अपने मन में तर्क किया होगा, अरे ये समय है, बहन व्हाइट नहीं समझी, अथवा आज तो जमाना ही और है, या वह परामर्श विगत समय के लिए उपयुक्त रहा हो परंतु इस समय के लिए उचित नहीं, जो शैतान इन दिनों में हमारे कान में फुसफुसाता है। उसी प्रकार के विचारों से उसने 1891 में उन आदमियों को आजमाया था। परमेश्वर ने अपने ही समय पर अपने ही ढंग से स्पष्ट कर दिया कि यह उसका काम है। वह पथ प्रदर्शन कर रहा है, वह रक्षा कर रहा है, उसका हाथ पतवार के ऊपर है। मिसेस एलन व्हाइट हमको बतलाती हैं कि परमेश्वर मामलों को विकट अवस्था तक पहुंचने देता है ताकि उसका आक्षेप प्रत्यक्ष दिखाई पड़े। फिर उसने इसको प्रत्यक्ष करके दिखला दिया कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। साक्षियां और पाठक।
एलन जी व्हाइट उन बातों को जिन्हें परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया था 70 वर्ष तक बोलती और लिखती रहीं। अनेक बार उन्हें जो बाइबल के सत्य से भटक गए थे सुधारने के लिए परामर्श दिए गए। अनेक बार उन्होंने ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया जिस पर परमेश्वर अपने लोगों को चलाना चाहता है। कभी कभी साक्षियां जीवन, परिवार और कलीसिया को सुव्यवस्थित करने के लिए दी जाती थीं। कलीसिया के सदस्यों ने इन संदेशों को कैसे स्वीकार किया? प्रारंभ ही से उत्तरदायी नेताओं ने मिसेस व्हाइट के कार्यों का निरीक्षण किया
ये निश्चय करने के लिए कि नबूवत के वरदान में वास्तविकता है अथवा नहीं। प्रेरित पौलुस चेतावनी देता है कि भविष्यद्वाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:20-21। बाइबल की परख मिसेज व्हाइट के कार्यों को परखने में प्रयोग की गई, और वो ऐसा ही चाहती थी, क्योंकि उन्होंने यों लिखा है, ये काम या तो परमेश्वर की ओर से है या है ही नहीं। परमेश्वर का शैतान के साथ कोई साझा नहीं। मेरे कार्यों पर विगत 30 वर्षों से या तो परमेश्वर की छाप रही या शत्रु की। इस मामले में दोनों का सम्मिलित कार्य नहीं है। धर्म पुस्तक 4 कसौटी बताती है जिनसे नबी का परीक्षण किया जाता है। मिसेज व्हाइट का कार्य प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरता है। 1. सच्चे नबी का संदेश। परमेश्वर की व्यवस्था और नबियों के संदेश के अनुकूल होना चाहिए। यशाया 8:20। ईजी व्हाइट के लेख परमेश्वर की व्यवस्था का समादर करते हैं और प्रत्येक स्त्री पुरुष का नेतृत्व संपूर्ण धर्म पुस्तक की ओर करते हैं। वे इंगित करती हैं कि बाइबल विश्वास और अभ्यास का माप और विशाल प्रकाश है, और उसके उल्लेख जो उस विशाल प्रकाश के सामने दीपक के समान है, पाठकों का उस प्रकाश की ओर नेतृत्व करते हैं। 2. सच्चे नबी के पूर्व कथन अवश्य पूर्ण होने चाहिए। यिर्मयाह 28:6। यद्यपि मिसेज व्हाइट का काम अधिकतर मूसा के भांति लोगों को मार्गदर्शन तथा नेतृत्व करने का था, तो भी उन्होंने अनेक घटनाओं का पूर्व कथन के रूप में लिखा है जो पूर्ण होने वाली थीं। हमारे छापे खाने का कार्य जब 1848 में शुरू हुआ तो उन्होंने वर्णन किया कि ये किस प्रकार बढ़कर अपने प्रकाश से पृथ्वी को घेर लेगा। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट आज अपने पुस्तकादि को 200 भाषाओं में छापते हैं, जिनका वार्षिक मूल्य $2 करोड़ अर्थात 20 करोड़ रुपए के लगभग होता है। सन 1890 में जब दुनिया ने घोषित किया कि अब युद्ध न होंगे और 1000 वर्षीय युग का अरुणोदय होने वाला है, उसी समय एलन व्हाइट ने लिखा, तूफान आने वाला है और हमें उसको प्रचंडता के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारे चारों ओर क्लेश दिखाई देंगे। सहस्त्रों जहाज समुद्र की तह में बैठ जाएंगे, जहाजों के बेड़े डूब जाएंगे और लाखों मनुष्यों के प्राणों की बलि ली जाएगी। ये पूर्व कथन प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध में अक्षरशः पूर्ण हुए। 3. सच्चा नबी स्वीकार करेगा कि यीशु मसीह देहधारी होकर आया और परमेश्वर ने मानव चोला धारण कर अवतार लिया है। 1 यूहन्ना 4:2।
डिजायर ऑफ एजेस नामक पुस्तक के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि एलन व्हाइट की कृतियां इस परीक्षा में पूरी उतरी हैं। इन पदों पर ध्यान दीजिए, यीशु चाहता तो पिता की दाहिनी ओर रह सकता था, वह स्वर्गीय वैभव तथा दूतों की श्रद्धांजलि त्याग न करता, परंतु उसने स्वेच्छा से राजदंड को पिता के हाथ में लौटा देना और स्वर्ग की गद्दी त्याग देना पसंद किया, ताकि अंधकार में पड़े हुओं को ज्योति और नाश होने वालों को जीवन पहुंचा सके। प्रायः 2000 वर्ष हुए स्वर्ग में रहस्यमय आशय की एक आवाज सुनाई दी। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया, देख मैं आ गया हूं। धर्म पुस्तक में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी करें। इब्रानियों 10:5-7। इन शब्दों में उस आशय के पूर्ण होने का सूचना दी गई जो अनादि युगों से गुप्त रहा है। मसीह हमारे जगत में आकर अवतार लेने वाला था। सांसारिक दृष्टि से मसीह में कोई सौंदर्य नहीं है जिसको देखने की इच्छा की जाए, तो भी वह परमेश्वर का अवतार था और स्वर्ग तथा पृथ्वी का प्रकाश था। उसके ऐश्वर्य पर पर्दा डाला था, उसका प्रताप व तेज छिपा था, ताकि वह शोकातुर और प्रलोभित व्यक्तियों के निकट आ सके। 4. शायद सच्चे नबी का निर्णायक उसके जीवन कार्य तथा उसकी शिक्षा के प्रभाव में पाया जाता है। मसीह ने इस परीक्षण का सारांश मत्ती 7:14-16 में बतलाया गया है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे।
जब हम एलॉन जी व्हाइट के जीवन का निरीक्षण करते हैं तो हमें यही कहना होगा कि उन्होंने अपने सिद्धांतों के अनुसार और नबी से जो आशा की जाती है उन बातों के अनुकूल एक प्रशंसनीय मसीही जीवन व्यतीत किया। जब हम इन परिणामों को देखते हैं जो नबूवत के आत्मा के परामर्शों पर चलने वालों के जीवन में प्रकट हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि वो भी बहुत अच्छा है। साक्षियों द्वारा परिणाम अच्छे निकले हैं। जब हम कलीसिया पर दृष्टि डालते हैं ये जानते हुए कि इन्हीं परामर्शों के द्वारा हमारी विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों की ओर पथ प्रदर्शन हुआ है तो हमको मान लेना पड़ता है कि मिसेज व्हाइट का कार्य इस परीक्षा में भी खरा उतरता है। 70 सालों से अधिक समयों में लिखे गए उल्लेखों का पारस्परिक ऐक्य व मेल इस वरदान की यथार्थता की एक पक्की गवाही है। सच्चे नबी के व्यावहारिक परीक्षण। धर्म पुस्तक की इन 4 भारी जांचों के अलावा परमेश्वर ने ऐसे प्रमाण दिए हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि यह कार्य उसी के मार्गदर्शन से है। इनमें ये है, 1. संदेश की साम्यकता। परमेश्वर के लोगों को कोई विशेष आवश्यकता होती है और संदेश ठीक समय पर उस जरूरत की पूर्ति के लिए भेजा जाता है, जिस प्रकार मिसेज व्हाइट को प्रथम दर्शन दिया गया था। 2. संदेशों की व्यावहारिक प्रकृति। मिसेज व्हाइट को दर्शनों द्वारा दी गई सूचनाएं व्यावहारिक मूल्य रखती थीं, जो व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करती थीं। देखिए, साक्षियों द्वारा दिए गए परामर्श हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रवेश करते हैं।
3. संदेशों का उच्च आत्मिक स्वर। उनका संबंध सामान्य बच्चों के से मामलात से नहीं किंतु उत्कृष्ट उच्च स्तर विषयों से होता है और जिनकी भाषा भी अत्युत्तम है। 4. दर्शन के दिए जाने का ढंग। अनेक दर्शन भौतिक घटनाओं के साथ दिए गए थे। भूमिका के प्रारंभिक अध्यायों में वर्णन किया जा चुका है कि मिसेज व्हाइट का दार्शनिक अनुभव बाइबल के नबियों जैसा था। यद्यपि ये एक जांच नहीं हो सकती, वरन एक प्रमाण तो अवश्य है। 5. दर्शन निश्चित रूप में अनुभव ही थे, केवल प्रभाव ही नहीं। दर्शन में मिसेज व्हाइट ने आंखों से देखा, कानों से सुना और दिल में महसूस किया और स्वर्गदूतों द्वारा संदेश प्राप्त किए। दर्शनों का कारण उत्तेजना तथा कल्पना नहीं था। 6. मिसेज व्हाइट आसपास के लोगों से प्रभावित नहीं होती थीं। एक मनुष्य को उन्होंने लिखा, आप कदाचित सोचते होंगे कि लोगों ने मेरे मन को पक्षपाती बना दिया है। यदि मेरी ऐसी स्थिति है तो मैं इस योग्य नहीं कि परमेश्वर का कार्य मुझे सौंपा जाए। 7. उनके समकालीन उनके काम की सराहना करते थे। कलीसिया के सदस्य जो मिसेज व्हाइट के साथ रहते तथा काम करते थे और अनेक जो कलीसिया के बाहर भी थे, वे उनको वास्तव में परमेश्वर के दूत जैसे देखते थे जो उनके निकटतम रहते थे। वे उनकी बुलाहट तथा कार्य पर बड़ा विश्वास रखते थे। बाइबल की ये 4 कसौटियां और स्पष्ट प्रमाण जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए हैं ताकि उनका विश्वास संदेश और संदेशदाता पर जम, हमें यकीन दिलाते हैं कि ये काम परमेश्वर का है और निस्संदेह विश्वास के योग्य है।
ईजी व्हाइट की अनेक पुस्तकें कलीसिया के लिए बहुमूल्य परामर्शों व आदेशों से भरपूर हैं, चाहे ये साक्षियां आम तौर की हों या परिवारों या व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत हों। ये आज भी हमारे लिए वैसे ही लाभदायक हैं। इस प्रसंग में मिसेज व्हाइट कहती है, जिस हाल की साक्षियों में दी चेतावनी व आदेश विशेष व्यक्तियों के लिए हैं, फिर भी दूसरों पर ये उतने ही जोर के साथ लागू हो सकते हैं जिनके ऊपर इस रीति से कोई संकेत नहीं किया गया था। मुझे मालूम हुआ कि ये मेरा कर्तव्य है कि कलीसिया के लाभार्थ इन व्यक्तिगत साक्षियों को छपवाऊं। मैं साधारण खतरों और गलतियों के प्रति और परमेश्वर से प्रेम रखने वालों और उसकी आज्ञा पालन करने वालों के कर्तव्य के प्रति अपने मंतव्यों विचारों को सुझाने का कोई श्रेष्ठतर उपाय नहीं जानती, सिवाय इसके कि उनके सामने साक्षियों को रख दें। साक्षियों का ये अनुचित प्रयोग होगा यदि हम किसी साथी पर दोषारोपण करने के लिए पढ़ें और उनके आधार पर कुछ ऐसी बातें निकालें जिनसे अपने सहयोगी की आलोचना कर सकें। साक्षियों को हथियार के रूप में भी प्रयोग नहीं करना चाहिए कि उनके द्वारा भय दिखाकर किसी स्त्री पुरुष की अपनी तरह चलने के लिए बाध्य करें। कुछ ऐसे भी मामले हैं
जो केवल उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच तय होने चाहिए। दूसरों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
उपदेश का चिंतन ऐसा होना चाहिए कि उन मौलिक सिद्धांतों को खोजें जो हमारे जीवन पर लागू हो सकें। कुछ संदेश चेतावनी और ताड़ना के रूप में विशेष समय और स्थान के लिए दिए गए थे, तो भी वे सिद्धांत अपने लगाव में विश्वव्यापी और प्रयोग में सम्मिलित हैं। मानव हृदय संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार का है। एक ही समस्या दूसरे की समस्याओं से मिलती जुलती है। मिसेस व्हाइट ने लिखा कि एक व्यक्ति की गलतियों पर ताड़ना देने से परमेश्वर का अभिप्राय अनेक व्यक्तियों के सुधारने के लिए है। वो कुछ लोगों की गलतियों को स्पष्ट कर दिखाता है जिससे दूसरों को शिक्षा मिले। अपने जीवन समाप्त होने के निकट मिसेस व्हाइट ने निम्न परामर्श दिया। परमेश्वर की आवाज उसके पवित्र आत्मा द्वारा चेतावनी और आदेश के रूप में हमारे पास निरंतर आती है। समय और आपत्तियों ने आदेश को प्रभावित नहीं किया। संदेश के प्रारंभिक दिनों में जो आदेश दिया गया उसको इन अंतिम दिनों में भी पालन करने में कोई भय नहीं है।
जो उपदेश नीचे चित्रित किए गए हैं वे एलन जी व्हाइट की अनेक पुस्तकों से लिए गए हैं, परंतु अधिकतर टेस्टिमोनीज ट्रेजर्स की 3 प्रतियों से लिए गए हैं, जो कि टेस्टिमोनीज फॉर द चर्च अर्थात कलीसिया के लिए साक्षियों का विश्व संस्करण है और उस आदेश को प्रकट करती है जो उस कलीसिया के लिए लाभदायक समझा जाता है जहां की सदस्यता इतनी थोड़ी है कि वो एक मध्यम आधार की प्रति छपवाने की आज्ञा नहीं देती। इन संदेशों को छांटने तथा व्यवस्थित करने का काम एक बड़ी कमेटी द्वारा किया गया, जो एलन जी व्हाइट पब्लिकेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में दिए हुए अधिकार से हुआ, जिनको नबूवत के आत्मा के संदेशों के प्रयोग तथा रक्षण का दायित्व सौंपा गया था। संग्रहित पुस्तकें प्रायः संक्षिप्त हैं और व्यावहारिक मौलिक सिद्धांतों तक ही सीमित हैं। इस प्रकार विस्तृत विषय सम्मिलित हैं। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों को प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। दूसरा इतिहास 20 आयत 20। द ट्रस्टीज ऑफ एलन जी व्हाइट पब्लिकेशन।